आज का हमारे इस सेशन का विषय है यूनाइटेड एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। हम सब जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज और हमारा पूरा जीवन अलग अलग पहलुओं से प्रभावित हो रहा है। इस क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं पर बाढ़ है तो कहीं सूखा पड़ा है। तो आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण, हमारी आदरणीय वंदनीय दीदियां, हम सबको इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार, अपने आशीर्वचन रखेंगे। तो उसके लिए मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आनंद पोदार, चेयरमैन पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। श्री जितेंद्र पारदेशी, सुपरिटेंडेंट ऑफ गार्डन्स एंट्री ऑफिसर बीएमसी मुंबई, और हमारे बीच में हमारी आदरणीय दिव्या दीदी जी और आदरणीय शुक्ला दीदी जी पधार चुकी हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर बीके पांडेमणि जी, डायरेक्टर वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स आरईआरएफ, श्री आरसी मित्तल, चांसलर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, मिस्टर एम प्रभाकर राव, चेयरमैन एनएसएल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैदराबाद, डॉक्टर एम मनिक वसगम, डायरेक्टर एसपीआईसी डीआरडीओ, श्री तुषार प्रभु, सीनियर डिप्टी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, राजयोगिनी बीके सरला दीदी जी, चेयरपर्सन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, श्री अद्वैत गढ़नायक जी, डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट आईसीसीआर, श्री मधुकर स्वामी जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना, बीके सुमन, नेशनल कोऑर्डिनेटर एजुकेशन विंग आरईआरएफ, बीके गोलो, हेड ऑफ प्रोजेक्ट इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट आबू रोड, और आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री राजेश्वर सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड वाइस प्रेसिडेंट सी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और साथ साथ हमारे नथमल भाई जी जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है यूरिस्ट विंग के। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें, और आप सब भी इन सबका तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें, और आप सबका भी हमारे इस प्लेनरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और अभी हमारा स्टेज सज चुका है, तो अभी हम एक मिनट उस परमात्मा की याद से, उस परमात्मा का शुक्रिया करते हुए, उनका आवाहन करते हुए इस सेशन की शुरुआत करेंगे।
आओ
अभी हमने गीत के बोल सुने कि आओ मिलकर बनाएं सुखमय संसार, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो यूनिटी को लेकर है। तो अभी हमारे मंच पर बैठे अतिथिगणों का मैं हमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि बैजेस और बुके द्वारा हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें, क्योंकि कहते हैं कि संगठन में वो शक्ति होती है, वो बल होता है, और जहां पर संगठन है वहां सफलता हमेशा मिलती ही है, और हमारा इतिहास भी इस बात के लिए गवाही देता है कि जहां पर संगठन मिल जाता है वहां पर कोई भी चुनौती का सामना करना इजी हो जाता है। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री राजेश्वर सिंह जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी का भी अभिनंदन हो रहा है, और तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कहते हैं तालियां भी एक एक्सरसाइज है। तो आज हम कहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, परंतु इस ताली से हम कम से कम अपने मन को और तन को सशक्त कर सकते हैं। तो जब तक हमारे मेहमानों का स्वागत हो रहा है तो तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी आदरणीय सरला दीदी जी जो कि चेयरपर्सन है एग्रीकल्चर एंड रूरल विंग की, उनका भी सम्मान हो रहा है। मिस्टर एम प्रभाकर राव चेयरमैन एनएसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैदराबाद, हमारी आदरणीय दिव्या दीदी जी का स्वागत हो रहा है जो कि सब जोन की डायरेक्टर हैं बोरीवली मुंबई। और अभी हमारे बीच में पांडेमणि भाई जी, उनका भी अभिनंदन हो रहा है जो के डायरेक्टर हैं वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के। और अभी हमारी आदरणीय सुमन दीदी जी का अभिनंदन जो के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग आरईआरएफ की। तभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज का एक स्लोगन है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं कि जब स्वयं का परिवर्तन होता है, स्वयं परिवर्तन करते हैं तो पूरा विश्व परिवर्तित हो जाता है, परंतु इसकी शुरुआत स्वयं से होती है। तो आज हम यहां से कुछ ऐसा लेकर जाएंगे कि हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, और स्वयं के परिवर्तन से ही पूरे विश्व को सुखमय संसार लाना है। और अभी हमारे बीच में बीके गोलो पिल्स का स्वागत हो रहा है जो कि हेड ऑफ प्रोजेक्ट इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट आबू रोड। आप सबने देखा होगा यहाँ पर हमारे एक सोलार प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और हमारे अतिथिगण जो भी स्टेज पर उपस्थित हैं, और आप सब यहाँ पर जो समय निकाल करके आए हैं, उन सब का भी हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और अभी मैं अनुरोध करूंगी, फूलों और बैजेस से तो स्वागत हुआ, अभी शब्दों के द्वारा हमारे आदरणीय डॉक्टर बीके पांडेमणि भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो शब्दों के द्वारा हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। हमारे आदरणीय पांड्यमणि भाई जी, आप सब जानते हैं कि वैल्यू एजुकेशन जो कोर्सेज ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा चलते हैं उनके आप डायरेक्टर हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज को रन करने के आप निमित्त बने हैं, क्योंकि आपका एक संकल्प है कि कैसे हम पूरे विश्व में उन वैल्यूज को लाकर, उन मूल्यों को लाकर के पूरे विश्व को परिवर्तन करें। अभी मैं आदरणीय पांड्यमणि भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत करें। डॉक्टर बीके पांड्यमणि भाई जी।
ओम शांति। वैश्विक शिखर सम्मेलन में आज जो प्लेनरी सेशन दो में है उसके लिए पधारे हुए सब मंच हासिन महानुभवों और सभी भाई बहनों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड वाइस प्रेसिडेंट सी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हॉनरेबल श्री राजेश्वर सिंह को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज का इस कार्यक्रम में एक सॉलिसिटेशन के लिए पधारे हैं जो ज्वेल ऑफ भारत का अवार्ड लेने वाले हैं, चेयरमैन एनएलएसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैदराबाद मिस्टर एम प्रभाकर राव, उसको भी मैं तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी इसके ओर से और आप सब की तरफ से स्वागत करता हूं। आज का इस कार्यक्रम में जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो पधारे हैं चेयरमैन पोडर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर आनंद पोडर को भी मैं स्वागत करता हूं, और जो सुप्रेंट ऑफ गार्डन्स एंड ट्री ऑफिसर जो ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्री जितेंद्र परदेशी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना श्री मधुकर स्वामी जी को भी मैं हृदय दिल से स्वागत करता हूं। आज का इस कार्यक्रम में जो हमारा चांद लगाने वाले हैं जो डांस ग्रुप फ्यूजन क्लासिकल कालावेदा एंड श्री ईशा स्कूल ऑफ आर्ट्स हैदराबाद, उनको भी मैं हृदय दिल से स्वागत करता हूं। आज का डांस कार्यक्रम में पधारे नूरपुर नृत्य अकादमी बीदर को भी मैं स्वागत करता हूं। जो डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट आईसीसीआर श्री अद्वैत चरण गत नायक को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमको ग्रीटिंग्स देने के लिए पधारे हुए हमारा एजुकेशन विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी बीके सुमन जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे हेड ऑफ द प्रोजेक्ट इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट अबुरोड ब्रदर बीके गोलो जे पिल्सा, उसको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमको इंसाइट्स देने के लिए हमारे सामने हैं सीनियर डिप्टी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद श्री तुषार प्रभु, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे आप सबको भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से देश सेल से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और आपका भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, और इसके साथ साथ आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि मंच की शोभा आप सबसे अधूरी है, आप नहीं होते तो हमारा ये मंच इतना सजता नहीं। तो आप सब जो सामने बैठे हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और अभी मैं हमारी आदरणीय वंदनीय दिव्य दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि आज का हमारा जो विषय है यूनाइटेड एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, उसके ऊपर अपने विचार हमारे बीच में रखें। आदरणीय दिव्य दीदी जी, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं और मुंबई बोरीवली सब जोन की दीदी डायरेक्टर हैं, तो अभी मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार हमारे बीच में रखें। और अभी हमारे बीच में गेस्ट का स्वागत हो रहा है, तो आप सब तालियों से अभिनंदन करेंगे। और अभी मैं आदरणीय दिव्य दीदी जी से अनुरोध करूंगी।
ओम शांति। आज की हमारे सेशन के चीफ गेस्ट राजेश्वर सिंह, हमारी वरिष्ठ दीदी शुक्ला दीदी जी और अन्य हमारे अतिथिगण, हमारे सेवा के साथी और इस सभा में उपस्थित आप सर्व भाई और बहनें, आज का जो विषय है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का कारण ये ऋतुएं क्यों बदल रही है, अनइवन हो रहा है, कभी बहुत अति गर्मी, कभी गर्मी के दिनों में बारिश, कभी भूकंप, कभी सुनामी, ये सब चेंजेस क्यों हो रखे हैं। और अभी सर्च करके ये जाना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सब चीजें हो रखी है, अति गर्मी से बर्फ पहाड़ों पर पिघल रखे हैं जिससे ये सुनामी आ रही है, भूकंप हो रखे हैं, साइक्लोन आ रखे हैं, ये सब चीजें जो अनगिन हो रखी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेवार कौन। हम सब बार बार ये सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं कि हमारा विश्व एक परिवार है और सारे विश्व में हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। तो जो कुछ बाह्य विश्व में चेंजेस हो रखे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। हमारे परिवर्तन से ही विश्व में ये परिवर्तन आ रहा है और बाह्य जो परिवर्तन है उसका कारण हमारे आंतरिक जगत में, हमारे आंतरिक विश्व में जो चेंजेस हो रखे हैं उसका प्रतिबिंब ये बाहर की दुनिया में, भौतिक दुनिया में हम देख रखे हैं। तो ये परिवर्तन की जड़, बीज आप और हम सब है। हम सब ये परिवर्तन के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे, ये जिम्मेवारी हमारी है। और परिवर्तन, क्या परिवर्तन हमें करना है हमारे जीवन में, क्योंकि बाहर की नेचर में जो चेंज आ रहा है वो हमारे आंतरिक नेचर, जिसको हम स्वभाव भी कहते हैं, स्वयं मैं एक ज्योति बिंदु, प्रकृति में निवास करने वाली मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के नेचर में, स्व के भावों में जो परिवर्तन आ रहा है उसका असर नेचर पर पड़ रहा है। मेरा नेचर बदलने से बाह्य नेचर में चेंज आ रहा है, इसलिए हमें अपने नेचर को, हमारे स्व के भावों को बदलने की जरूरत है। हमारे स्वयं में रहम का भाव, शुभ भाव, निस्वार्थ भाव, कल्याण का भाव, स्नेह का भाव, ये हमारे मन में जागृत करना ये अति आवश्यक है। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ये भाव हमारे मन में कैसे आए। तो हम सर्व आत्माओं के पिता, निराकार परम पिता परमात्मा, जो कि सर्व के कल्याणकारी हैं, रहम दील हैं, प्रेम आनंद सुख और शांति के सागर हैं, उनके साथ हम सब आत्माओं का संबंध है। और उस संबंध में रहेंगे तो हमारे स्वभाव में चेंज आएगा। कहा भी जाता है, जैसा संग वैसा रंग। हम मानसिक रूप से उस पिता परमात्मा के सानिध्य में, संग में जितना रहेंगे, उतने हमारे भावों में शुद्धि और शुभ भावनाएं हैं वो आएगी। और ये चेंज ही ये बाहर के नेचर में चेंज ले आएगा। हम देख रहे हैं कि सूर्य कितनी सुंदर सुबह के समय पर उनकी रोशनी हमारे जीवन में आशा का किरण लेकर के आती है, हमारे जीवन का उमंग और उत्साह बढ़ाती है, हमारे स्वास्थ्य को उससे लाभ मिलता है। ये पांच तत्व प्रकृति हमारे पर कितना उपकार कर रही है। वृक्ष प्रकृति को, हरियाली को देखे, वो हमें फल फूल सुगंध और छाया देती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर कितनी विशालता और समाने की उनमें शक्ति है। उनसे भाई ने जो कहा कि वैल्यू की बात, तो ये तत्वों से भी हमें वैल्यू हम सीख सकते हैं। और देखते हैं कि विश्व के अंदर 70-75% यहाँ पर पानी है, और कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो ये जल की इकोनॉमी हम कितनी करते हैं, इस जल को हम कितना उपयोगी और इकोनॉमी करके उसकी बचत कैसे करते हैं। एक बारी खाएं नहीं तो चले, लेकिन पानी के बिना सुबह उठने के साथ हमें जल की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही देखिए कि ये भूमि, जमीन, धरती जिस पर हम सब बैठे हैं, हम सब जीते हैं, धरती को माता कहा जाता है। और धरती माता के गर्भ में कितने खजाने भरे हैं, आज चाहे डायमंड हो, गोल्ड हो, क्या क्या चीजें इस धरती माता से हमें मिलती है। सबसे बड़ा तो अन्न का उत्पादन होता है इस जमीन से ही, जो हमें भोजन के बिना नहीं चलता। इन तत्वों का हमारे पर कितना उपकार है, साथ साथ हवा, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। अभी कोविड के समय पर बिना ऑक्सीजन किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, तो इस वायु को भी हम प्रदूषित कर रखे हैं। अभी ये तो निस्वार्थ भाव से हमारे पर ये तत्व प्रकृति तो उपकार कर ही रही है, लेकिन हमें सोचना है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। चलो हम और कुछ न करें तो उनको बचाएं तो सही। आज वृक्ष हम काटते हैं, साथ साथ हवा में ये जो कारखाने और जो दवाइयां बनती है, कितना जहरीला वायु इसके अंदर मिक्स होता है, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम ही तो ये कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने अंदर चेंज लाने की आवश्यकता है और उनको सेव करने की जरूरत है। विज्ञान ने भी ये बात प्रूव की है कि चाहे एक वृक्ष हो, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उनकी पालना कितनी प्यार से हम करते हैं, तो वो पौधे बहुत जल्दी से उनका ग्रोथ और अच्छा ग्रोथ होता है। ऐसे पानी पर भी हमारे मन के विचारों के वाइब्रेशन और भाव उन पर भी इफेक्ट करते हैं, ये भी विज्ञान ने प्रूव किया है। तो चलो हम कम से कम ये तो करें कि प्रकृति को प्यार से देखें, उनके प्रति रहम भाव, शुभ भाव, और सदा उनका शुक्रिया अदा करें कि कितना हमारे पर उनका उपकार है। इस शुभ संकल्प, शुभ विचार के वाइब्रेशन दें और बहुत हमारी प्यार भरी दृष्टि से देखें। एक पौधे के साथ हम टच करें तो भी हमारी भावना कितनी प्यार भरी उनके प्रति है ये देखें। ऐसे हर पांच तत्वों के प्रति हमारी भावना ऊंची, अर्थात हमारा नजरिया उनके प्रति ऊंचा हो, प्यार भरा हो, हमारा व्यवहार भी उनके साथ इसी प्रकार का हो, और साथ साथ हमारी वृत्ति में भी वो शुद्ध भावना हो, और सदा ही हम उनके आभारी हैं कि जो बिना कोई अपेक्षा के वो हमारी पांच तत्व हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हमारी भी फर्ज है इनों की सेवा करना, सेफ रखना। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक संस्था ने एक कार्यक्रम किया था, तो एक वृक्ष के ऊपर उन्होंने एक होर्डिंग लगाया था, तो नेचुरली है खिले लगाए हुए थे। एक युवा भाई आया और उसने ये कहा कि आपने ये होर्डिंग उन संस्था को कहा कि आपने लगाया है? उन्होंने कहा हाँ, हमने एडवर्टाइज के लिए लगाया है। लेकिन वो कह रहा था कि उनको देख करके मेरे हृदय में बहुत पेन हो रहा है, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। क्यों? कहता था कि आपने उसको किल लगाया है, उस वृक्ष को कितना हानि, कितना पेन होता होगा। वो पेन को देख करके मुझे पेन होता है। कितने प्रकृति के प्रेमी, कितने इस वृक्ष के प्रेमी इस विश्व में है, अर्थात उनके साथ भी एक चैतन्य मनुष्य आत्मा के साथ जैसे व्यवहार हम करते हैं, वो भी हमारी भावनाओं को वो भी समझते हैं। बोल नहीं पाते हैं लेकिन हमारी भाव और भावनाएं, हमारा सोच, वो तो जरूर उनको इफेक्ट है, वो कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे नेचर को हम चेंज करें, हमारे स्वभाव को हम बदली करें। कई बार आपने देखा होगा कि बिना ऋतु बहुत जोर से बारिश आती है, कहते कितनी वर्षा बरस रही है। तो मानव भी तो ये कर रहा है, कभी भी अचानक क्रोध से बरस पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि अरे बात तो कोई भी नहीं थी, ये कितना बरस रहे हैं मेरे पर, हम बरस रहे हैं तो ये पानी भी बरस रहा है। ऐसे ही कोई घटना, कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे मन के अंदर विचारों की सुनामी आती है। तो हमारे अंदर सुनामी है तो बाहर भी सुनामी है, वो आ रही है। इसी तरह से कोई भी छोटी सी बात किसी ने मुझे कह दी, तब हम कहते हैं कि अरे इन्हों की ये बात सुनकर इस धरती से मेरे पांव खिसक गए, मेरे मन के अंदर हलचल हो गई, मेरी स्थिति हिल गई। तो अंदर भूकंप आ रहा है, अंदर भूकंप है तो बाहर भी भूकंप आ रहा है। ये बाहर कुछ जो हो रहा है वो अचानक और वैसे ही नहीं हो रहा है। हम जो अंदर में कर रहे हैं या हमारी आंतरिक स्थिति का ही ये प्रतीक है। तो इनको बाह्य ढंग से तो हम इलाज कर ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए वृक्ष का ध्यान रखना, प्लास्टिक बैग आदि का हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। हमारे आंतरिक नेचर को, हमारी मानसिक स्थिति को परिवर्तन करना ये आवश्यक है और ये चेंज ही बाह्य जगत के अंदर भी चेंज है वो ले आएगा, ऐसे मैं मानती हूँ। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प जरूर करेंगे कि मैं अपने आंतरिक जगत में, नेचर में चेंज लाऊंगी, जो परमात्मा हमें सर्वशक्तिमान है, इसमें सफल होने में उनकी याद से हमें शक्ति मिलेगी और साथ मिलेगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अब दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बताया कि बाहरी चेंज को अगर रोकना है तो पहले हमें अंदर सशक्त बनना होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में डॉक्टर आनंद पोदार जी, जो कि चेयरमैन है पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, कि वो आज हमारे बीच में अपने विचार रखें। ही इज चेयरमैन ऑफ पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ही हैज 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीनियर मैनेजमेंट। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रदर डॉक्टर आनंद पोदार जी टू शेयर हिज व्यूज।
आदरणीय मंच, आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय भाई, आदरणीय दीदी, आदरणीय बहन, बड़ा सुखद और बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में, जहां पर हम नए युग की बात कर रहे हैं दिव्य ज्ञान से। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है, इट इज ए रिच एंड पॉपुलर फॉर इट्स कल्चर, हेरिटेज, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात इसलिए की क्योंकि पहले एक वक्त था जब हम इंटेलिजेंट कोशेंट की बात करते थे, धीरे धीरे इमोशनल क्वेश्चेंट की बात होने लगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सोशल क्वेश्चेंट की बात होने लगी। और अभी ये मेरा मानना है कि जो सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो स्पिरिचुअल क्वेश्चेंट है। और आज हम ब्रह्मकुरी, ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो ईश्वर ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती जहां पर हमें आत्मिक ज्ञान और ईश्वर ज्ञान दोनों मिल रहे हैं। और आत्मा से परमात्मा का जो ये परिवर्तन है, ये इसके हम साक्षी हो रहे हैं। क्योंकि आज का जो विषय था वो यूनाइटेड एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज है, तो अभी मैंने बहन जी को सुना तो निस्संदेह, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया जो हमारा है जो नेचर से भरपूर है, तो बहन जी ने भी यही बताया था कि जो हमारे पास प्रकृति है, तो किस तरीके से हम हमारी प्रकृति को सहेज करके रखें, क्योंकि उस प्रकृति से हमें सब कुछ मिल रहा है। हम क्यों एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जा रहे हैं जब हमारा आयुर्वेदिक देश है, हमारे पास वो सब बायो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे हम जो प्लांटेशन करते हैं यहाँ पर, इतना बढ़िया पीस पार्क है और वहां हम देखते हैं कि किस तरह से औषधीय पौधे उगाए जा रहे हैं, और उससे सभी तरह की दवाइयां बनाई जा सकती हैं। इसी तरीके से आज हम क्यों केमिकल पेस्टिसाइड खेतों में डाल रहे हैं जब हम बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं, और हमने हमारे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च करके बायो पेस्टिसाइड भी बनाया है। तो इस तरीके से वो प्रकृति ने हर चीज हमें दी है, तो हम क्यों केमिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज अगर हम कंपोस्ट बैग बना सकते हैं, ग्रीन बैग्स बना सकते हैं, तो हम प्लास्टिक बैग्स को क्यों यूज कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो निश्चिंत हमारी प्रकृति की बात करते हैं, और दूसरी हम स्वयं, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और स्वयं को चेंज करना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 80% जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ये आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो ये सब हमारे मनुष्यों की देन है। तो हम अगर स्वयं चेंज हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि विश्व चेंज हो जाएगा। और ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल, स्पेशली मी, क्योंकि हम लोग शिव बाबा के जो महावाक्य सुनते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, उसके माध्यम से हमें कितने ज्ञान रत्न मिलते हैं, ज्ञान के मोती मिलते हैं। और मुझे लगता है कि वो हमें निश्चित श्रीमत पे ले जा रहे हैं। और जिस तरह के जो हम स्वयं के परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये सब जो हर्षित मुख हमें देखने को मिलते हैं, जो खुशियां यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, मैं कल रेडियो स्टेशन पे भी इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वहां जो हर्षित चेहरे देखे, खुशियों से भरपूर चेहरे देखे, तो मैं सहज हो गया और इतना आनंद आया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो ये जो परिवर्तन और जो ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम कल किसी सज्जन से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये सब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कितनी स्मूथली चल रहा है, तो इसके पीछे राज क्या है। तो इसके पीछे जो हमें लगता है, फिर वो एक और भाई बैठे थे, उन्होंने कहा डेडिकेशन। तो मैं तो इसके डेडिकेशन के साथ दो तीन चीजें और जोड़ूंगा, आत्मिक ज्ञान, ईश्वर ज्ञान और शुभ संकल्प। तो ये सब मिलके ही ये इतना सब कुछ हो पा रहा है। तो इस तरीके से मेरा तो यही कहना है कि हम जो है अपने को समझें, हम आत्मिक रूप में है, इसको भी समझें, क्योंकि जो आत्मा है, इट इज नथिंग बट इट इज एन एनर्जी, ऐसी एनर्जी विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम हमारे वेदों से भी कहते हैं, हमारे गीता में भी यही लिखा हुआ है कि ना आत्मा मरती है, अविनाशी है। तो वो जो हमारे आत्मिक ज्ञान है, जो हमारा स्वधर्म है, हम उसको पहचाने, और निश्चित ही उसको पहचानने से ही मुझे लगता है कि जो आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि ये सब मनुष्य की बनाई हुई अनएथिकल प्रैक्टिसेज हैं, और जितना हम उसको उस पर रोकथाम करेंगे, तो उससे पहले हमें सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और मैं पुनः ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी को का शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे इस मंच से मौका दिया। ओम शांति, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद पोदार जी। हम सब जानते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, परंतु समय के अभाव के कारण मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वो सागर को गागर में भरने का प्रयास करें। और अभी हमारे बीच में श्री जितेंद्र पारदेशी जी, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ गार्डन्स एंट्री ऑफिसर बीएमसी मुंबई, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो शॉर्ट में अपने विचार हमारे बीच में रखें। श्री जितेंद्र पारदेशी जी।
ओम शांति। दीदी ने मेरा काम पहले ही आसान कर दिया शॉर्ट में बोल के। सर्वप्रथम मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संस्था ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसलिए सभी का शुक्रगुजार हूँ। ग्लोबल समिट 23 में निमंत्रित किया, इसलिए सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्लाइमेट चेंज समिट 23 में जो प्रकृति बचाने का काम ब्रह्म कुमारी संस्था कर रही है, उसके लिए मुंबई में हम लोग, मुंबई यूनिट उसमें काफी अच्छा काम कर रहा है। मुंबई महानगर पालिका के सहयोग से सभी गार्डन में सवेरे योगाभ्यास होता है, उनकी जो जो क्रिया है वो होती है। मुंबई में करीबन हम लोगों ने, मुंबई में 30 लाख पेड़ है, और इस सभी लोगों के साथ मिलकर हम नए, काफी मियावा की पद्धत से अभी हमने नए 5 लाख पेड़ लगाए। और प्रकृति बचाने में ब्रह्म कुमारी के सभी भाई और बहनें हमको सहयोग करे, और ऐसा ही सहयोग आगे मिलते रहे, इसकी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में श्री आरसी मित्तल जी, जो के चांसलर हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर से, कि वो अपने विचार हमारे बीच में रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रकृति को बचाना, क्लाइमेट को बचाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो अभी मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो शॉर्ट में अपने विचार हमारे बीच में रखें।
मंचा सिंह दीदी, भाई लोग, एंड सामने बैठे हुए मेरे प्रिय भाई बहने, मेरे पूर्व वक्ता ने, जैसा कि दीदी ने, पंडित बनी दीदी ने आपको सब कुछ बताया कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इसके मेन कारण हम खुद ही लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, प्लांट को काट रहे हैं, और हमारे स्वभाव से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि हमारा इरिटेशन, हमारा गुस्सा ग्लोबल वार्मिंग में एक सहयोग करता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा हम क्लाइमेट के प्रति दयालु हों और इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी प्लांट, पौधों, किसी की वृक्ष को भी हानि न पहुंचाएं और अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखें, तो उससे प्रदूषण भी कम होगा और सहायता मिलेगी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री आरसी मित्तल जी, चांसलर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर। और अभी समय है हमारे डांसर्स को, हमारे कल्चर ग्रुप को बुलाने का, जो कि म्यूजिकल क्लासिकल डांस आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कलावेदा एंड श्री ईशा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैदराबाद से ये ग्रुप हमारे बीच में आया है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करते हैं और इनका आह्वान करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें। फ्यूजन क्लासिकल डांस फ्रॉम कलावेदा एंड श्री ईशा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैदराबाद। अभी हमारे बीच में इनकी जो गुरु है वेद कीर्ति मैम, वो बताने जा रही हैं कि वो भी क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी मैं अनुरोध करती हूँ मैम से कि वो इसके बारे में बताएं।
स्टेज पे बैठे सभी लोगों का, आदरणीय दिग्गज लोगों का मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हियर। एंड आज हम, थैंक यू एवरीवन जो हमको आशीर्वाद दे, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको और बच्चों का हौसला बढ़ाए। एंड आज हम क्लासिकल डांस का एक फ्यूजन परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, जहां पर हम हमारे जो ट्रेडिशनल भरतनाट्यम है उसको हम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एंड गजेंद्र मोक्षकम का एक घट है जो यहाँ पे बताया जाएगा, एंड विथ पॉट्स एंड लाइट्स वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। प्लीज इसको देखिए और हमें ब्लेस कीजिए। थैंक यू सो मच।
जनन जनन तनन 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 तुम 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 जनन जनन तनन 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 तुम
एक बार जोरदार तालियों से हम इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी बच्चों से अनुरोध है स्टेज पर ही रहें, और अभी मैं आदरणीय शुक्ला दीदी जी और सरला दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि बच्चों को शॉल और सौगात के साथ सम्मानित करें और एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति हमारे बीच में रखी। और अभी मैं इनके गुरु और इनके बच्चों से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और आदरणीय शुक्ला दीदी जी और सरला दीदी जी इन बच्चों का सम्मान करें। इस कल्चर को देखकर लगता है कि भारत हमारा कितना रंगों से भरा हुआ है, जहां पर इतना अच्छा क्लासिकल डांस के माध्यम से हम अपने भारत को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आदरणीय शुक्ला दीदी जी और सरला दीदी जी इन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं और आप सब तालियों के साथ इन बच्चों का सम्मान और इनका हौसला बढ़ाएं। और हम ये चाहेंगे कि आप हर साल यहाँ पर आएं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो आप देते हैं वो हर साल हमारे बीच में देते रहें। ये बच्चे ही हमारे भारत का भविष्य हैं, जो इस भारत को उज्जवल बनाने में मददगार हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का जो हौसला है वो बढ़ता रहे। ये पूरा ग्रुप हैदराबाद से आया है, जो कि कलावेदा एंड श्री ईशा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैदराबाद का ये ग्रुप है। भारत की संस्कृति दिखाई देती है। बच्चों का मोमेंटो और शॉल के द्वारा अभिवादन। और ये जो इनके साथ इनके गुरु जो इनको ट्रेन करते हैं, जो इनको इतना अच्छा डांस जो आप सबके बीच में प्रस्तुति हुई वो सब सिखाते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छे बच्चों को तैयार किया, ट्रेन किया, तभी वो हमारे बीच में इतनी अच्छी प्रस्तुति कर पाए। एक बार पूरे ग्रुप के लिए, कलावेदा एंड श्री ईशा स्कूल्स ऑफ ट्रस्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए और अपनी प्रस्तुति हम सबके बीच में दी। तो अभी ये भारत, ये हमारा देश, जहां पर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम भारत को स्वर्णिम देश की तरफ, एक सुखमय संसार की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि ये एक व्यक्ति से होने वाला चेंज नहीं है। जब हम सब मिलकर के इस परिवर्तन को लाएंगे तो हम अपने उस सुखमय संसार की तरफ बढ़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया, वो स्वर्णिम भारत के नाम से पुकारा जाता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ईशा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स ग्रुप का। और अभी मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में मिस्टर एम प्रभाकर राव, जो कि चेयरमैन है एनएसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैदराबाद, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि अपने विचार हमारे बीच में रखें। मिस्टर एम प्रभाकर राव इज अ ग्रुप चेयरमैन ऑफ द एनएसएल ग्रुप एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएसएल सीड्स, द लार्जेस्ट सीड्स कंपनी इन इंडिया। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर मिस्टर एम प्रभाकर राव टू शेयर हिज व्यूज।
टू दी रेस्पेक्टेड दी सिस्टर्स फ्रॉम द ब्रह्मकुमारी यूनिवर्सिटी, the important guests and all the brothers and sisters assembled here, I feel that it is my great privilege to be here and speak out a few words on this occasion. I am very much benefited from the teachings of the Brahmakumaris, the principles of changing self for changing the world, positive thinking for developing your personality and developing your cause, and the meditation for confidence, peace and reassurance, and also the way the spirituality is simplified in the preachings of the Brahmakumaris. These things benefited me, and I'm sure they benefit the whole universe in the same way. The climate change, of course, is a huge concern for all of us. The primary principle that has been preached by the leaders like Mahatma Gandhi, that the nature has got enough for all of us, for all of our needs, but not for the greeds. On that principle, if we can limit our requirements and focus on the basic principles of soil and water conservation and recycling, reducing the chemical usage and moving towards biologicals, be it in medicine, be it in agriculture, I think these things will make a big difference. With these few words, I once again thank the organizers for giving me this opportunity, and I would like to wish all the best to all of you. Namaskar. Om Shanti.
Thank you so much, brother. Now I would like to invite Dr. M. Manik Vasagan, FIE Director, Development of Software for Project Information Centers, DRDO, and Director, System Analysis, DG DRDO, to share your views. Dr. M. Manik Vasagan ji.
Om Shanti. A very good evening to you, good morning to you all. And at the outset, I would like to thank the Brahmakumaris for giving me this opportunity to be part of the summit and to say a few words. Respected Chief Guest and Rajayogini Shukla Didi and all other dignitaries on the dais and off the dais, brothers and sisters, it gives me immense pleasure in sharing my views in this August gathering. And today's topic is basically the united efforts to combat the climatic change. See, the entire world is working on this climatic change, how to control and how to overcome it. This climatic change is basically coming from, it is originates from all the individuals, the pollution and using the traditional, not using the traditional things, and started using the plastics and other things. And the way we are growing, and we started, we used to take a drinking water from pond or general things, but nowadays we are going for bottled water. And tomorrow the situation goes like this, maybe we may have to go to an accident kiosk for breathe the things itself. So I think it is our primary duty to all individuals to work for how to control the temperature and other climatic changes which is happening in the around the globe. In fact, internationally, people are working. In fact, recently there was one summit internationally. All the countries are coming to a closer on how to control the climatic change on the Mother Earth. In fact, the environmental ministry is working very hard to control this kind of destroying the trees and trying to construct the buildings and whatnot. And even with all that constraints by the environmental ministry, but still the climatic changes are happening. And I appeal to all the individuals here. I think it is a beginning that we all come together, and we need to work for how to control the climate and how to use the all traditional things instead of going for chemicals. And in fact, Brahma Kumaris is doing an excellent service for the mankind. And having come here, and at least if each one of us starts working on this good cause, I think we can make the Mother Earth non-polluted and without any climatic changes. Thank you. Jai Hind. Om Shanti.
Aapka bahut bahut dhanyawad. Aur abhi main bulana chahungi Shri Tushar Prabhu ji, jo ki assistant resident editor hai Times of India Ahmedabad. तो उनसे मैं अनुरोध करूंगी. ओके, तो अभी समय है अपने मन को सशक्त करने का, उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने का. तो अभी मैं आदरणीय सरला दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सबको उस राजयोग के बारे में बताते हुए उसका अभ्यास हमें कराएं, क्योंकि राजयोग एक ऐसी शिक्षा है जो हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ता है. तो आदरणीय सरला दीदी जी, जो के चेयरपर्सन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के, और ये हमारी वो दीदियां हैं, वो वंदनीय आदरणीय दीदियां हैं, जो जिन्होंने इस राजयोग का अभ्यास लगभग 60 वर्षों से किया है, और उस राजयोग को सिर्फ किया नहीं है, अपने जीवन में उसको लाया है, उसको अपनाया है. तो अभी मैं आदरणीय सरला दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सबको एक रूहानी यात्रा की ओर लेकर चलें. आदरणीय सरला दीदी जी.
ओम शांति. सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, प्रिय आत्मन, आज के मंच पर उपस्थित अति विशिष्ट सम्माननीय आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित समग्र भारत, नेपाल, अन्य देशों से पधारे हुए हमारे माननीय अतिथिगण, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा विचारणा कर रहे हैं. ये हमारे विश्व की एक ज्वलंत समस्या है, और उस समस्या का समाधान हम सब के हाथों में है. जैसा कि हमने पूर्व वक्ताओं से सुना कि क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, अगर हम थोड़ा सा पास्ट को याद करें तो ये भारत देश, जो सत्व प्रधान पुण्य भूमि, जिस देश में चारों ओर हरियाली थी, हर मानव मन में खुशहाली थी। इतना सुंदर प्रकृति और मानव का सामंजस्य था। कालचक्र में परिवर्तन आते आते दिव्यता समाप्त हुई, मानवता आई और कुछ कुछ समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई, जिनका व्यक्ति ने समाधान किया। विज्ञान का आविष्कार हुआ, विज्ञान ने हमें उन समस्याओं के समाधान में सहयोग दिया, परंतु विज्ञान एक वरदान है। मानव की वृत्ति में परिवर्तन आने के कारण से हमने उस वरदान को अभिशाप का रूप दे दिया। मानवता भी समाप्त हुई, दानवता आई, मात्र मात्र स्वार्थ। और जब मानव मन में विकृतियां पैदा हुई, तब प्रकृति के साथ का जो उसका तालमेल था वो टूट गया। मां धरती जो हमारी पालना करती है, बच्चों के समान हमें बड़ा करती है, हर प्रकार के खनिज पदार्थ हमें धरती से प्राप्त होते हैं, उस मां धरती का हमने दोहन किया। स्वार्थ और लोभ के वश ऐसे ऐसे केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इन सब का उपयोग कर जो हरी भरी धरती थी, उस मां धरती को हमने बंजर बना दिया। और आज वही देश का तात किसान दुखी होकर के दयनीय दशा में जी रहा है, जबकि वर्तमान समय सरकारों के द्वारा, एनजीओस के द्वारा काफी योजनाएं जिनसे उनको लाभान्वित किया जा रहा है। मैं आज के इस विषय के उपलक्ष में आपको ये खुशखबरी बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी का कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग जो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, प्रभाग ने सबसे पहले ये लक्ष्य रखा कि जो देश, भारत भूमि, किसानों की भूमि है, ये कृषि प्रधान देश है, इस देश के तात अर्थात किसान, जो देश किसान है, उस किसान को सशक्त किया जाए आध्यात्मिकता के माध्यम से। और आज सैकड़ों नहीं, हजारों किसानों ने आध्यात्मिकता के द्वारा अपने जीवन में, अपने चरित्र में परिवर्तन लाया है। और उनके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो हमारी खेती है, आज दूसरों को अन्न खिलाने वाला किसान खुद फांसी का फंदा खा रहा है, हमारे कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस दिशा में जो कदम उठा रहे थे उससे प्रभाग ने उनको बचाया है। इस राज्यों के सशक्त माध्यम से उनके मनोबल को दृढ़ बनाया गया, उनको खेती की एक नई कृषि पद्धति जो हमारी प्राचीन ऋषि कृषि पद्धति है उससे अवगत करा करके उस प्रकार की खेती करने की उन्हें प्रशिक्षण दिया। और आज हजारों किसान ये शाश्वत योगिक खेती के आधार से, जो कल ऋण के बोझ से दबे हुए थे, आज ऋण मुक्त होकर के आनंद और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक प्रयास किसानों के ऊपर, दूसरा प्रयास मां धरती को न केवल प्राकृतिक ढंग से खेती करने का, उसके अंदर में कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल्स डालने का, लेकिन सबसे बड़ा प्रयोग जो ये प्रभाग कर रहा है वो है योगिक खेती। योग अर्थात उस परम सत्ता के साथ जब कृषक अपने संबंध को जोड़ता है, भौतिक और पराभौतिक दोनों का समन्वय होता है, और वो पवित्र प्रकंपन जिससे मां धरती की ऊर्जा जो नष्ट हो गई है पुनः उस शक्ति, उस धरती के अंदर शक्ति का संचार होता है जिससे उसका जर्मिनेशन, उसकी पौष्टिकता और उसकी उत्पादकता में परिवर्तन आ रहा है। इस दिशा में भी प्रभाग ने अनेक कृषि विश्वविद्यालयों के साथ MOU करके, सरकार के साथ में सहयोग लेकर के बहुत सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिससे हम अपनी जो ये समस्या है इस देश की क्लाइमेट चेंज, उस क्लाइमेट को चेंज करके पुनः जो हमारी आदि संस्कृति के समय क्लाइमेट था उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो परिवर्तन का आधार है व्यक्ति, व्यक्ति की वृत्ति और उसके अंदर जो वैल्यूज, शुभ भावनाएं, पॉजिटिव थॉट्स, वो किसान माँ धरती को देते हैं, न केवल अपने खेत को बल्कि समग्र विश्व के अंदर पवित्र प्रकंपनों को फैला करके ये एक उत्तम कार्य नेचर को चेंज करने का प्रभाग के द्वारा चल रहा है। तो चलिए, जिसके द्वारा किसानों को बहुत लाभ हुआ है, जो हम पूर्व वक्ताओं से सुन चुके हैं कि उनके अंदर वो मैत्री भाव, वो समभाव आता है जिससे प्रकृति में परिवर्तन आता है। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाना चाहूंगी। एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र के अंदर में एक हमारा कृषक भाई है, उसने 5 एकड़ में खेती करता है और कहता है मैंने काफी वर्षों से कोई भी केमिकल्स उस खेती में नहीं डाले हैं, लेकिन मेरा काम है, मैंने उसमें आधा एकड़ जगह में पानी का तालाब बनाया है और उस तालाब के किनारे पर फल के वृक्ष लगाए हैं और रोज सुबह और शाम वहां बैठ करके मैं ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर के पक्षियों का आवाहन करता हूँ। और बोला मुझे पंछियों से बात करने में बड़ा मजा आता है, पंछी आते हैं, वृक्ष पर बैठते हैं, फल उनके खाने के लिए, पानी उनके पीने के लिए। बोला मैं बहुत विनम्रता से उनको कहता हूँ कि ये सारी खेती ईश्वर की खेती है, तुमको भी खाने और पीने का अधिकार है, तो जो तुमको खाना है वही खाना, इस खेती को तुम नुकसान नहीं करना। उसने अनुभव में सुनाया कि कोई भी पक्षी खेती को नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि जो कीड़े मकोड़े उन कीड़े मकोड़ों को खा करके उनको सहयोग प्रदान करते हैं और बहुत सुंदर परिणाम उसको प्राप्त हुए हैं और उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। ये है हमारी सकारात्मक वृत्ति का परिणाम। जब माँ धरती को हम प्यार से याद करते हैं, उसके साथ एक मातृत्व का संबंध रखते हैं, तब वो हमें, भले हम कहते हैं कि आज प्रकृति बहुत बरसात हुई और पानी से खेती को नुकसान हुआ, हमारे पास यहाँ तक प्रैक्टिकल अनुभव है कि चारों तरफ बरसात गिरी है, खेती को नुकसान हुआ, ओले पड़े हैं, लेकिन जिस किसान ने अपने खेत को इन पवित्र प्रकंपनों के बल से बांधा हुआ था, चारों तरफ उन प्रकंपनों को फैलाया हुआ, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वहां उसकी खेती में सुंदर परिणाम प्राप्त हुए, नुकसान नहीं बल्कि खेती हुई है। ऐसे हजारों मिसाल हैं। ये मिसाल हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम आप सब, सिर्फ आवश्यकता है अपनी आंतरिक वृत्ति को बदलने की, और उस वृत्ति को बदलने के लिए स्वयं को आत्मा निश्चित करें, समझें। 2 दिन से आपके यहाँ राजयोग के सत्र चल रहे हैं, आपने आत्मा और परमात्मा का गहरा अभ्यास भी किया होगा, तो चलो कुछ क्षणों के लिए हम इस माँ धरती को भी अपने पवित्र प्रकंपन प्रदान करें। चलेंगे अंतर की यात्रा पर। अंतर चक्षु को खोलेंगे। मैं ब्रह्मकुटी के मध्य बीच विराजमान चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के चारों ओर शांति और पवित्रता के प्रकंपनों का आभामंडल फैला हुआ है। मैं आत्मा ज्ञान शांति प्रेम सुख आनंद पवित्रता शक्ति इन सर्व गुणों का पुंज मैं पुंज आत्मा धीरे धीरे इस पांच तत्व की प्रकृति से परे इस भौतिक जगत से परे दूर बहुत दूर अखंड ब्रह्मांड में जहां प्रकृति पति परमात्मा विराजमान है मैं आत्मा उस परमात्मा पिता के समीप पहुंच गई हूं। जिससे अखंड और प्रचंड शक्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, मैं भी उस शक्ति के घेरे में उस पराभौतिक शक्ति परमात्मा से समग्र विश्व को शक्ति का दान दे रही हूं। हे मां धरती, ये पवित्र प्रकंपन आप में समा रहे हैं। मां धरती की ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है। ये पवित्रता के प्रकंपन दूषित वातावरण को समाप्त कर रहे हैं। खेतों में पौधों में एक अलौकिक खुशी लहराते हुए पौधे दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा की सर्वशक्तियां समग्र भूमंडल को शक्तिशाली बना रही हैं। हर किसान के मन को शांति पहुंचा रही है। ये भारत देश जो ऋषि कृषि की भूमि है, सर्वोत्तम खुशहाली दुनिया है, पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मांड की समग्र शक्ति भूमंडल को परिवर्तन कर रही है। चलिए वापस ब्रह्मांड से पुनः इन पांच तत्वों की दुनिया के अंदर इस नीले आकाश के नीचे पुनः प्रवेश करें। मैं पांच तत्व के पुतले में ब्रह्मकुटी आसन पर विराजमान हूं। संकल्प करेंगे हर आत्मा के प्रति मैत्री भाव, समभाव, सद्भाव और प्रकृति प्रेमी बन करके रहेंगे। पुनः इस भारत को हरा भरा विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हम अपनी हर रोज की दिनचर्या का आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।
आदरणीय सरला दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें उस राजयोग का अभ्यास कराया, क्योंकि ऐसा राजयोग है यहाँ पर हम अपने मन को शांत और सशक्त कर सकते हैं। और आप सब ने यहाँ दो दिन में देखा भी होगा कि हर घंटे में यहाँ पर एक मिनट के लिए साइलेंस में रहते हैं, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। उस एक मिनट की साइलेंस में स्वयं को उस परमात्मा से कनेक्ट करते हुए अपने आप को रिचार्ज करना, यही राजयोग है। तो दीदी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं अनुरोध करूंगी श्री तुषार प्रभु जी से, जो कि असिस्टेंट रेजिडेंट एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद से, कि वो शॉर्ट में अपने विचार हमारे बीच में रखें। आदरणीय श्री तुषार प्रभु जी,
धन्यवाद। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी परम ज्ञानी महानुभाव, ब्रह्म कुमारी के दादियां, भ्राता जी, आप सबको मैं सादर वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि 15 दिनों में ही मुझे यहां दूसरी बार मेरे विचार रखने के लिए मुझे बुलाया गया, आमंत्रण मिला है, और इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी और खास करके हमारे कोमल जी हैं उनका हृदयपूर्वक मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष यहां मौजूद सब लोग जो दूर दूर से आए हैं उनका मैं एक विशेष अभिवादन करना चाहता हूं, और इसका एक कारण है कि आप जिस संस्थान में जिस धरती पर आए हैं वहां आप ब्रह्म कुमारीज हैं, ब्रह्म बाबा हैं, उनके प्रकल्प जो विश्व शांति है उसके आप दूत बन के आए हैं, और जो भी यहां पे आपको ज्ञान मिलता है आप सब जगह बांटते हैं, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहां उपस्थित रहने के लिए। दोस्तों, शांतिवन सिर्फ एक संस्थान नहीं है जहां पे इमारतें हैं, बिल्डिंग है, गार्डन है, ऑफिसेज है, ये ज्ञान का बड़ा एक विशाल सागर है, और उस सागर की कुछ बूंदे मैं हमेशा मेरे साथ अहमदाबाद लेके जाता हूं, और जैसे हम कोई पवित्र नदी के पास जाते हैं वहां का जल लाते हैं ठीक वैसे तरह अब मैं इस जल को मैं जितने लोग मिलते हैं उनको मैं देने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, इसके विविध कारण हैं। अब ये मेरी निष्फलता है या उनका दुर्भाग्य है वो आप ही तय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं 23 साल से पत्रकार के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, और पत्रकार जितने माहिर होते हैं अपनी कलम चलाने में उतने ही माहिर होते हैं अभिनय करने में, आपने देखा होगा टीवी पे, और मैं कोई इसमें अपवाद रूप नहीं हूं, और शायद मेरा अभिनय देख के भी मुझे यहां बुलाया जाता है, वैसे ये सिर्फ एक मजाक की बात थी, थोड़ा गंभीर विषय पर चर्चा है इसलिए सोचा थोड़ा हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर बना दे। मैं इस क्यू संस्था का ऋणी हूं मैं ये बात कहना चाहता हूं, और ये जो बातें हैं वो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, क्योंकि यहां जितने वक्ताओं ने बात की के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, और वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्लाइमेट चेंज हो, वॉर हो, कोविड पैंडेमिक हो, महामारी हो, या स्वच्छता भी क्यों ना हो, हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते जब तक हम अपने आप को ना बदले, जो वक्ताओं ने कहा बिल्कुल बहुत ही सही कहा। तो मैं एक अनुभव, बहुत सारे अनुभव है वैसे तो, एक साल जब से मैं राजयोग मेडिटेशन में सीखा बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं संक्षिप्त में एक अनुभव कहना चाहूंगा। मई के महीने में मेरे साथ एक दुर्घटना घटी, और ये दुर्घटना शब्द मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे भी आप कारण क्या है आप समझ जाएंगे। मेरे घर पे फ्लोरिंग का काम चल रहा था, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, और उस कंपनी ने बड़ा ही खराब काम किया, कंप्लीटली मेसअप कर दिया, और घर पे बहुत ही सबको स्ट्रेस था, और क्योंकि हमको शिफ्ट करना पड़ा दूसरी जगह, तो मैं एक वीक उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि, लेकिन एक बार मेरे से रहा नहीं गया, और जो मैनेजर आए थे मैंने उनको बुरा भला काफी कहा। लेकिन दोस्तों, ये सुबह की घटना थी 10:30 की, जब मैंने उनको बहुत बुरा भला कहा, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया, मुझे 12 घंटे तक मुझे बहुत ही बेचैनी रही, और रात को 11 बजे मैंने उनको फोन करके उनको सॉरी बोला, उनकी क्षमा मांगी। तब वो मैनेजर बोले कि नहीं नहीं सर, हमको तो आदत है क्लाइंट से गाली खाने की, आप क्यों। मैं बोला नहीं, लेकिन मुझे आदत नहीं है और वो आदत मैं कब की भूल चुका हूं, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, और मैं चैन की नींद सो सका। यह संभव नहीं था एक साल पहले, और सिर्फ संभव हुआ ब्रह्म कुमारी के राजयोग मेडिटेशन द्वारा। ऐसे कई उदाहरण है लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षिप्त में मेरी बात रखना चाहूंगा। और क्षमा की बात हुई है तो एक मुझे बहुत ही मजेदार किस्सा याद आया है, तभी भी याद आया था जब मैंने वो व्यक्ति से क्षमा मांगी थी। अब्राहम लिंकन, आप सबने नाम सुना होगा, अमरीकी राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अपनी सेक्रेटरी को कुछ डिक्टेशन दे रहे थे, कुछ नोट्स दे रहे थे, और बीच में एक महिला थी जो बीच में इतना बोल रही थी, चिल्ला रही थी, तो उनके सेक्रेटरी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अब्राहम लिंकन को पूछा कि लिंकन साहब ये कौन है, ये बीच में बोले जा रही है। तो अब्राहम लिंकन ने बड़े शांति से जवाब दिया कि वो मेरी पत्नी है, मैरी टॉड लिंकन। सेक्रेटरी बड़ा घबराया, पसीना पसीना हो गया और हाथ जोड़ के उसने बोला, क्षमा कीजिए सर, मेरी भूल हो गई। लिंकन साहब ने उसको बोला कि नहीं नहीं, आप क्यों क्षमा मांग रहे हो, वो भूल तो मेरी है। तो जिसको समझ में आए वो हमें, तो ये किस्सा मुझे याद आया था। आज का जो विषय है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही जटिल विषय है जिसकी कक्षा हमको वॉर तक ले जाने की है। इसके विषय में इंटरनेट, गूगल पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो हम स्वयं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं क्लाइमेट चेंज में। लेकिन हां, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो क्रोध, जो ईगो, जो हमेशा दुखी रहना, ये सब जो मेरे में ये पुअर क्वालिटीज थी वो मैं कब की भूल चुका हूं। एक क्षमा की भावना आई है और मैं सदा खुश रहता हूं, जो ब्रह्म कुमारी इसका अल्टीमेट मिशन है। तो एक बार फिर से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और मैं यही समझता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, आज मैं अभी डॉक्टर आनंद जी से बात कर रहा था जो एजुकेशन फील्ड में है, तो इसका बीज हम बच्चों में उगाएं। क्यों? इसका एक कारण है। मैं भी एक पिता हूं, मैं भी एक पेरेंट हूं। आज स्कूल में मैं दूसरे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, किस तरह की सोच है। आज किसी पेरेंट के लिए बोल देना या एक बच्चे के लिए बोल देना कि आई हेट हर, कोई को स्टूडेंट हो या मुझे नफरत है उस बच्चे से, मैं हैरान हूं इस मानसिकता से। नफरत जैसा कठोर शब्द आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोच भी कि हम नफरत बच्चे के साथ करें या किसी के साथ भी क्यों करें वैसे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। और ये ब्रह्म कुमारी इसका जो मिशन है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप हमेशा स्कूल में भी ये करते आए होंगे, लेकिन इसका एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों में जब वो विकसित हो रहे, उनका मन विकसित हो रहा हो, तभी से उनमें अच्छे संस्कार आए। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो एक मॉरल साइंस नाम का एक विषय होता था हमारे, जहां नैतिक मूल्य पढ़ाए जाते थे। बड़ी ही प्यारी कहानियां थी और उससे पढ़ाए जाते थे, झूठ नहीं बोलना, स्वार्थी मत बनना, किसी को मतलब हिंसा मत करना, और ये सब हमको सिखाए जाते थे। लेकिन हमारे साथ जो भी सीखे उनमें से काफी लोगों पे पुलिस केस भी चल रहा है अभी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एक सब्जेक्ट, एक विषय एक बच्चों पे आप थोपो तो कभी उसका वो साकार नहीं होगा, हमारा एम साकार नहीं होगा। तो इसके लिए एक अलग फ्रेमवर्क वर्कआउट करने की शायद जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहां पे एक बहुत ही बड़े फ्रांस के महान नाट्यकार थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो प्रवर्तमान परिस्थिति है दुनिया की, तो वो बात अभी भी इतनी ही साकार है। उन्होंने कहा था कि ये विश्व इसलिए पीड़ित नहीं है क्योंकि दुर्जन लोग हैं, वो दुर्जनता का काम कर रहे हैं, ये विश्व इसलिए पीड़ित है क्योंकि सज्जनता निष्फल गई है, सज्जन लोग निष्फल गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब सज्जन बने, और इमेजिन कीजिए कि सब सज्जन इकट्ठे हो तो विश्व कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। हम आज जो प्रसन्नता के लिए इतना हम संघर्ष कर रहे हैं, YouTube वीडियोस देख रहे हैं, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी स्ट्रेसफुल, शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो ये उनके वाक्य बहुत सुंदर मुझे याद है, और मैं मानता हूं कि ये हमें, इसकी ओर हमें प्रयास करना चाहिए। काफी सारी बातें हैं जो स्पेशली मेरे ब्रह्म कुमारी इसके जो अनुभव है जो मैं बांट सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं मेरी बात यही संपूर्ण करना चाहूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री तुषार प्रभु जी। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट श्री अद्वैत गढ़नायक जी कि वो शॉर्ट में अपने विचार हमारे बीच में रखें। ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ICCR। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी। अद्वैत गढ़नायक जी एक भारतीय मूर्तिकार है। वे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में मूर्ति कला स्कूल में प्रमुख थे। वे राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के महानिर्देशक हैं जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार हमारे बीच में रखें।
मंच को भूमिष्ठ प्रणाम, सबको प्रणाम, ओम शांति। चलिए, दो दिन से थोड़ा हम थक गए होंगे लग रहे हैं। चल, जब कलाकार ज्यादा बोलता है लेकिन उसका अनुभव बताने के लिए मैं यहां आया हूं। ये जो एटमॉस्फेयर है, जो जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग बैठे हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ फील भी करते हैं, बताना भी जरूरत नहीं है। इसलिए रामायण महाभारत में भी आप देखे होंगे, वो राज पैलेस में होता था ना, वहां पर भी वो स्कूल बना सकते थे, लेकिन उनका बच्चे को बोलते थे अरे भाई कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना है तो जंगल जाओ, ये शहर में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो एजुकेशन, जो बात हम करते हैं, एक एटमॉस्फेयर सब कुछ बताता है। और सबसे बड़ा टीचर होता है नेचर। जो कुछ भी हमने सीखा है ना, नेचर ने हमको सीखा है। और हमने भी एक्चुअली, जब मैं पत्थर पे काम करता हूं, तो जब मैं मानता हूं हमारी प्लैनेट में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर है पत्थर, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उससे सरेंडर करो, उससे आप डायलॉग भी कर सकते। तो एक इतिहास पूरा उसके अंदर, एक लेयर भी पूरा हिस्ट्री बताता है। जब उसको कार्विंग करते हैं, झगड़ा भी होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज करता है, उसका स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आपका स्किन का साथ मर्ज हो जाता है, एक दोस्ती शुरू होता है। एक बार दोस्ती हो गया ना, फिर आप सब कुछ, एक्चुअली जो बात हम कर रहे हैं कि हम कभी रिसोर्स के बारे में, नेचर को अभी हम रिसोर्स हिसाब से यूज कर रहे हैं। हम कभी मेटेरियल के लिए भी सोचे नहीं थे आर्टिस्ट होके, हम धरती को मांग रहे थे कि आपसे पत्थर लेके जा रहे हैं और अच्छी तरह से गिफ्ट बनाकर आपको प्रेजेंट करेंगे। एक रिलेशन अलग था, वो रिलेशन एक्चुअली आजकल एजुकेशन में भी, गुरु जी जब शांति निकेतन में थोड़ा इसको शुरू किए थे, तो वहां पर श्री अरविंद, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, गुरु जी, बंकिम चैटर्जी, इंडिपेंडेंस से पहले का बात है, बंकिम चैटर्जी वंदे मातरम लिख रहे हैं और नंदलाल बोस अजंता एलोरा जा रहे हैं, सारी चीज को कलेक्ट करके उसको रिवाइव करने के लिए। एक्चुअली जब तक आप रूट को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, वो बात नहीं होता है। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप किस तरीके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जब छोटा था, आप 63 70 का बात मैं कर रहा हूं, उस टाइम हम लोग ऐसे खेलते बुलते रहते और घर में अलाउ नहीं करते थे, दोपहर को अलाउ नहीं, हम पेड़ में चढ़ने वाला थे, पानी में कूदने वाले, लेकिन वो क्या करते थे, एक रूम में लाके हमको बंद करके रखते थे। वो रूम इतना गर्मी होता था और इतना लाइट होता था कि वहां बैठना भी मुश्किल होता था, लेकिन मेरा जिद था कि नहीं, कुछ हमको करना है, तो एक दिन का बाद, दो दिन का बाद, इस तरह का जो सिस्टम में आया कि मेरे को लगा कि वो छोटा सा कमरा है ना, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, वो जो गर्मी था धीरे धीरे ठंडी हो रहे हैं, और उसका जो सोच है ना, जब उसका अंदर आप उसी तरह का रहते हैं तो आपको एक डार्कनेस तक ले जाता है कि आप जिसको फील कर रहे हैं, जैसे हम लोग आंख भी बंद कर लेते हैं ना, वो डार्कनेस को हम देखते हैं, और वहां पर हमारी जो क्रिएशन है ना सारी कुछ हम क्योंकि आर्टिस्ट का रोल बहुत मेजर रोल रहता है, आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप जो व्हीकल ट्रैवल करते हैं, कुछ भी आपका सुविधा के लिए हम लोग सारी डिजाइन करते हैं, लेकिन उसमें सारी ही पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जो देश में विदेश में आप सारी कुछ देख रहे हैं, आपका सुविधा के लिए एक्चुअली जो कपड़ा बात में कर रहा हूँ, डिटेल बात करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये सारी आपका सुविधा के लिए करके, क्योंकि जो कोरोना का टाइम मैंने दिल्ली में देखा, लोग मेरे को आके बताया अरे जमुना का पानी साफ हो गया, स्काई में स्टार आ गया, तो थोड़ा सा हम रुक जाते हैं ना, धरती सांस ले लेता है, तो अभी वो टाइम आ गया, हमको कैसे इसको मैनेज करना, कैसे कहाँ रुकना है, वो आप लोग सारी इसके लिए माहिर है, आप जो यहाँ पर है वो सारी लेके जा रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अद्वैत गढ़नायक जी का। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी से। कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम बड़ों की ब्लेसिंग्स के बिना अधूरा होता है, तो आदरणीय शुक्ला दीदी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन हम सबके बीच में रखें। आदरणीय शुक्ला दीदी जी हरिनगर न्यू दिल्ली सब जोन की डायरेक्टर हैं, और ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो मानेसर गुड़गांव में है उनके भी आप डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ लगभग पिछले 65 वर्षों से भी ऊपर आप इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। तभी मैं आदरणीय शुक्ला दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन हम सबके बीच में रखें।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। बहुत ठंडी ठंडी आवाज आ रही है, थोड़ा सा चुस्त हो जाइए, प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। उस परम शक्ति परमात्मा जिनको हमारे प्यार से संबोधित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। उस पिता को समक्ष रखते हुए मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहनों जो बहुत दूर दूर से नेपाल से भी पधारे हैं, उन सबको अभिवादन भी है, और उनको समक्ष रखते हुए आज का विषय आप सबने सुना कि पर्यावरण परिवर्तन में संयुक्त प्रयास। आप और हम सब वर्तमान समय यह अनुभव कर रहे हैं कि प्राकृतिक प्रदूषण अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता जा रहा है। सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर से बाहर होते जा रहे हैं, जल वायु ध्वनि के ऊपर भी प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रदूषण को बदलने के लिए वैज्ञानिक अपने 20 नाखूनों का जोर लगाकर अनेक अनेक योजनाएं भी बना रहे हैं, परंतु उसके लिए कभी तो हरी क्रांति पैदा करते हैं, कभी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के नए नए उगानों का भी बढ़ोतरी करते हैं, और कभी फिर और अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे कि ये पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाए। परंतु अनुभव कहता है कि ये प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जो चिंता का एक विषय बनता जा रहा है। प्रदूषण जो है वो हमारी मानसिक चेतना का सूचक है, बाहरी प्रदूषण हमारे मानसिक वृत्तियों का सूचक है, हमारे मूल्यों का दर्पण है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी आंतरिक स्थिति बहुत दूषित होती जा रही है, जिसका प्रभाव सारे वायुमंडल के ऊपर है। कहा जाता है जब मानव की आंतरिक स्थिति में स्वच्छता है, शुद्धता है और संतुलन है, तो उसका प्रभाव भी वायुमंडल के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। जब हमारी मानसिक आंतरिक वृत्ति अशुद्ध हो जाती है, अस्वच्छ हो जाती है और असंतुलित होती है, उसका प्रभाव भी वायुमंडल पर है। आज अगर अच्छी तरह से विचार करें तो आज के मानव में अच्छे संस्कारों की, श्रेष्ठ विचारों की और नैतिक मूल्यों की गरीबी आ गई है, और उस गरीबी का प्रभाव सारे वायुमंडल के ऊपर, सारे विश्व के अंदर है। आप देखेंगे वर्तमान समय सारे विश्व के ऊपर दृष्टि दौड़ा करके देखेंगे तो चारों ओर वायु परिवर्तन, वायुमंडल पर में, मौसम में और वातावरण में बहुत बदलाव आता जा रहा है और प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। कई बार तो इतनी विनाशकारी घटनाएं होती हैं जिसको देखकर मनुष्य बहुत दुखी और अशांत होता है। उसका कारण क्या है कि आज हमारी मानसिक वृत्तियां दूषित हो चुकी है। अब उस दूषित वृत्तियों के परिणाम से ही ये सारा वायुमंडल प्रभावित हो गया। तो क्या ही अच्छा हो जो हम अपनी वृत्तियों को सबसे पहले चेंज करें। वृत्तियां हमारी तभी चेंज हो सकती है जब हमारे पास शक्तिशाली ज्ञान, व्यवहारिक सद्विवेक और आध्यात्मिकता की पुट होगी। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, विश्व गुरु माना जाता था जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही सतो प्रधान, शांत और शीतल होते थे, जिसका प्रभाव चारों तरफ पड़ता था। तो प्रकृति हमें बहुत खुशहाली और हरियाली और मंगलकारी भावनाएं देती थी और चारों तरफ सुख और शांति का साम्राज्य था, जहां तक शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे और बहुत सुख और शांति की बांसुरी बजती थी। परंतु काल चक्र के कारण धीरे धीरे मानव की चित्तवृत्तियां दूषित होती गई और उस चित्तवृत्तियों का प्रभाव इतना पड़ गया जो आज सारा वातावरण दूषित हो गया और यहां तक कि मानव की सोच, मानव की विचारधारा, मानव का आचरण, मानव का दृष्टिकोण, मानव का व्यवहार सब बदल गया। और उस बदलते हुए व्यवहार के कारण अनेक प्रकार की ऐसी जटिल समस्याएं पैदा हो गई जिसके कारण सारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। तो चाहे प्रदूषण मानसिक है, चाहे प्रदूषण बाहरी है, उन सब प्रदूषणों को देखकर सोचने के लिए व्यक्ति विशेष बाध्य हो जाते हैं कि आखिर ये प्रदूषण कैसे चेंज हो सकता है। तो उसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना हमें सत्य का बोध कराते हुए अंतर मन की ओर ले जाती है। अंतर मन में जो हमारी शक्तियां व्यर्थ जाती है उसको बचाती है। आध्यात्मिक चेतना हमें सशक्त जीवन जीने की कला प्रदान करती है। आध्यात्मिक चेतना हमें हमारा सच्चा सच्चा मार्ग प्रदर्शक है, जो हमें एक एक ऐसी राह दिखाता है जिससे हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और आध्यात्मिक चेतना हमारी इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ और एकाग्र करती है जो हमारी सफल जिससे ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको यही कहूंगी कि आध्यात्मिक चेतना हमें सकारात्मक चिंतन, शुभ चिंतन, समस्त चिंतन की धारा को प्रवाहित करती है जो जोड़ने का काम करती है और जो ये भी कार्य करती है कि कैसे एक सबको मिला करके उसमें एक ऐसा एकता, प्रेम, एकता, दया, करुणा और सहयोग की भावनाओं को पैदा किया जाए। तो आज मेरा आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है कि अगर हम चाहते हैं इस पर्यावरण प्रदूषण को, इस जलवायु के प्रदूषण को बदला सके, तो उसके लिए अपने अंदर शुभ चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन और शुद्ध चिंतन की भावनाओं को जागृत करें, जो ही शुद्ध संकल्प ऐसा पैदा करें, क्योंकि शुद्ध संकल्प सब बीजों का बीज है। जहाँ शुद्ध संकल्प पैदा हो गया, शुभ चिंतन और स्वचिंतन पैदा हो गया, वो इस वातावरण, प्रकृति के वातावरण को और मानसिक प्रकृति को भी बदल सकता है। तो कितना ही अच्छा हो आज जो हम सब यहाँ पर बैठे हाथ में हाथ मिलाकर भिन्न भिन्न विचारधारा होते हुए भी एक विचार को अपने सामने रहे, एक मत होकर के ये शुद्ध संकल्प करें कि इस प्रकृति को और इस पुरुष मीन्स आत्मा जो जीवात्मा के रूप में संसार चक्र में कार्य कर रही है, इन दोनों को ही हमें सतो प्रधान शुद्ध शीतल बनाना ही है। तो जब हम ये शुद्ध संकल्प करते हैं और उसमें एकाग्रता होती है तो उसमें सफलता भी जरूर मिलती है। तो इसलिए मेरी आप सबके प्रति यही शुद्ध भावना है कि आप इस आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा सकारात्मक चिंतन और अपनी सोच को बदल दीजिए, क्योंकि सोच का सारे वायुमंडल के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। कहते हैं सोच बदल गई तो जहान बदल जाएगा, सोच को अगर नहीं बदला तो जहान को हम चाहे कितना भी प्रयास करते रहे वो नहीं बदल सकता है। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बार बीरबल और बादशाह अकबर दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे और इसी सोच के ऊपर वार्तालाप कर रहे थे कि और यही कह रहे थे कि सोच का मनुष्य के विचारों का वातावरण के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बीरबल ने कहा, बादशाह महाराज अगर आप चाहो तो इसको अजमा के देखिए। तो शहर के अंदर एक ढिंढोरा पीट दिया गया कि फलाना तालाब है, उसका सारा पानी निकाल दिया गया है और फलाने दिन फलाने टाइम पर इसके अंदर सभी दूध का लोटा डालेंगे। तालाब को सुखा दिया गया था पानी से और ये ऐलान हुआ कि सबको इसमें दूध का लोटा डालना है। अब बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा, थोड़ा आप सोच लीजिए। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब वो निश्चित दिन आया तो सबने सोचा, एक व्यक्ति ने सोचा, अरे इतने बड़े तालाब के अंदर अगर मैं दूध की जगह पानी का लोटा डाल दूंगा तो क्या होगा। तो वो क्या हुआ, ऐसा वातावरण फैल गया जो हर एक ने उसके अंदर पानी का लोटा डालना शुरू किया और दूध नाम मात्र था उसके अंदर। तो जब बादशाह अकबर और बीरबल वहां आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो पानी ही पानी है, दूध का तो नामो निशान नहीं है। तो आप सोचिए ये सब परिणाम किस चीज का था, बादशाह अकबर की सोच का। तो कहते हैं सोच बदल दो तो सब कुछ, वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा, प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी और हम सब भी शुद्ध और पवित्र आत्मा बन जाएंगे जो राजयोगा मेडिटेशन इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर सिखाया जाता है, जिसका अभ्यास आप सबको दो दिन के लिए कराया भी गया। वो अभ्यास अगर आप अपने परिवारों में जाकर के भी करेंगे तो आप देखेंगे आपका परिवार, आपका समाज सब परिवर्तित हो जाएगा। हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मानव आत्मा एक ऐसी शक्ति है वो जो चाहे सो कर सकती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको फिर मैं शुभकामना और शुभकामना देती हूँ कि सोच को बदल लो, दृष्टिकोण को बदल लो, समृद्धि और विचारों को बदल लो तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला दीदी जी का, जिन्होंने हमें बताया कि अंदर के प्रदूषण को अगर हम खत्म करेंगे तो बाहरी प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अभी मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और शुक्ला दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि जो भी हमारे मंच पर सम्माननीय मेहमान बैठे हैं उनका वो सम्मान करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी ऑनरेबल श्री राजेश्वर सिंह जी, जो कि हमारे आज के इस सेशन के चीफ गेस्ट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड वाइस प्रेसिडेंट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आप आए तो आप सब तालियों के द्वारा, अभी प्रोग्राम थोड़ा शेष है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब बैठे रहें। इसके बाद एक बहुत सुंदर नृत्य भी होने वाला है। आप सब तालियों के माध्यम से हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल श्री राजेश्वर सिंह जी, उनका अभिनंदन, उनका धन्यवाद हो रहा है। और आप सब तालियों से, तालियों में कोई कंजूसी नहीं, तालियों के माध्यम से आप उनका स्वागत धन्यवाद करें। अभी मैं अनुरोध करूंगी श्री आरसी मित्तल जी, जो कि चांसलर हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें आदरणीय शुक्ला दीदी जी और मृत्युंजय भाई जी से। इसके बाद आप सब जानते हैं कि जो भी ग्लोबल समिट में फेलिसिटेशन होता है और जो भी अपनी फील्ड में कुछ विशेष कार्य करते हैं उनको वो सम्मान दिया जाता है। तो अभी जूल्स ऑफ भारत अवार्ड मिस्टर एम प्रभाकर राव, चेयरमैन एनएसएल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैदराबाद, और इसके साथ साथ मिस्टर डॉक्टर एम मनिक वसगम, FIE डायरेक्टर SPIC DRDO एंड डायरेक्टर सिस्टम एनालिसिस DG DRDO, इनको जूल्स ऑफ भारत अवार्ड के साथ सम्मान किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करें, क्योंकि ये अवार्ड जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ विशेष कार्य किया होता है उनको ये ऑनर दिया जाता है। अभी मिस्टर एम प्रभाकर राव जी का अवार्ड के साथ स्वागत और धन्यवाद। और अभी डॉक्टर एम मनिक वसगम जी से अनुरोध है कि वो आएं सामने और अपना अवार्ड प्राप्त करें। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर आनंद पोदार जी से, जो कि चेयरमैन पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आएं और ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। श्री तुषार प्रभु जी, असिस्टेंट रेजिडेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, वो भी ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। श्री अद्वैत गढ़नायक जी, जो कि डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ICCR हैं, उनसे भी अनुरोध करती हूँ। और इसके साथ हमारे बीच में हमारी सभा में मिस्टर रमन सैनी जी बैठे हैं, जो कि ब्यूरो चीफ है लाइव इंडिया न्यूज जम्मू एंड कश्मीर, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो स्टेज पर आएं और ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। ये मंच, ये समय है हमारे मेहमानों का स्वागत करने का, उनका अभिनंदन करने का और ताली बजती रहनी चाहिए। जितनी अच्छी ताली बजेगी उतनी भूख लगेगी और उतना अच्छे से आप ईश्वरीय घर में आकर उस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार कर पाएंगे। तो जो भी हमारे गेस्ट हैं, अभी हमारे बीच में श्री तुषार प्रभु जी जो कि असिस्टेंट रेजिडेंट एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद से, उनका सम्मान हो रहा है। इसके बाद श्री अद्वैत गढ़नायक जी, डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ICCR, उनसे अनुरोध है कि वो सामने आए और ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। और इसके बाद मिस्टर रमन सैनी जी जो कि ब्यूरो चीफ है लाइफ इंडिया न्यूज, उनका भी अभी स्वागत हो रहा है, धन्यवाद हो रहा है और ईश्वरीय सौगात। भगवान के घर में जो भी आता है वो ईश्वरीय सौगात के बिना नहीं जाता है, क्योंकि वो एक यादगार होता है कि भगवान के घर से, कहते हैं भगवान के घर से एक अमृत भी मिलता है, एक भोग भी मिलता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, कदर होती है। तो आप सब भी यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो ईश्वरीय सौगात हो, वो प्राप्त करके ही जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में नुपुर नृत्य एकेडमी से एक डांसर ग्रुप आया हुआ है बीदर से, उनसे अनुरोध है कि वो स्टेज पर आए और जैसे बाकी सब ने अपना कल्चरल परफॉर्मेंस दिया, ऐसे ही स्नूपर नृत्य एकेडमी जो बीदर से आया है उनसे अनुरोध है कि वो अपनी डांस की प्रस्तुति हम सब के बीच में दें और आप सब तालियों के माध्यम से इन बच्चों के हौसले को बढ़ाएं और इस प्रस्तुति को देखें। नुपुर नृत्य एकेडमी फ्रॉम बीदर।
आग बहे तेरी रग में, तुझे सा कहा कोई जग में, है वर का तू ही तो पहला पहर, तू आंख जो खोले तो ठाए गहर।
आसीना अंत है उसका वो सब गाना, इनका उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का, मंत्र तंत्र जानी सर्वज्ञ के स्वाभिमानी, जय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी, भांगत दूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर है जत्ता, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय। जना में गंगा चांद मुकुट है, पम में कभी कभी बड़ा विकट है, आंत जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी, राम भी उसका रावण उसका, जीवन उसका मरण भी उसका, पांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है, मांग तीसरी जब ये खोले किले जरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षेत्र में नाद उसी का पम पम बोले, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय।
बहुत बहुत
धन्यवाद नुपर नृत्य एकेडमी बीदर का। और आप सब बच्चे यहीं पर रहे, आप सबका सम्मान हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और सरला दीदी जी से अनुरोध है कि वो आए और इनका सम्मान करें। और इसके साथ साथ अभी मैं आदरणीय सुमन दीदी जी से भी इसके साथ साथ अनुरोध करूंगी कि वो अपनी ग्रीटिंग्स हम सबके बीच में रखें। आदरणीय सुमन दीदी जी, हमारा जो ज्ञान सरोवर जो के माउंट पर हमारा एक कैंपस है वहाँ पर रहते हैं, और जो हमारा एजुकेशन विंग है उनके वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज भी आप कराते हैं, तो आदरणीय सुमन दीदी जी से मेरा अनुरोध है कि वो ग्रीटिंग्स हम सबके बीच में रखें।
ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित मेरे दैवी भाई और बहनें, इस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के बाद सभी के अंदर एनर्जी आई होगी, यही मेरी अपेक्षा है। आज का ये बहुत सुंदर टॉपिक यूनाइटेड एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत हमारे सुंदर वक्ताओं ने बहुत सुंदर अपने विचार व्यक्त किया। हमारे दीदियों के वक्तव्य में यही हम सभी को समझ में आया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हम कर सकते हैं। स्व के विचारधारा को परिवर्तन करेंगे तो क्लाइमेट को हम परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ हम ये महसूस कर रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि अपने विचारों को अपने वृत्तियों को परिवर्तन करने से क्लाइमेट को हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अगर एक बेहद रूप से अगर देखा जाए पूरा संसार जो है तीन सत्ताओं का खेल है, प्रकृति पुरुष और परमात्मा का खेल है। परमात्मा सर्वशक्तिमान सदा शिव, वो सदा सर्वशक्तिमान है, वो अपरिवर्तनशील है। लेकिन जो परिवर्तन होने वाली सत्ताएं हैं वो है आत्माएं और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। पुरुष माना आत्माएं, आत्माएं जब सत्वप्रधान होती है तो प्रकृति भी सत्वप्रधान होता है, लेकिन जब आत्माएं तमोप्रधान होती है तो प्रकृति भी तमोप्रधान होता है। अभी वर्तमान समय हम देख रहे हैं कलयुगी समय चल रहा है और इसीलिए प्रकृति तमोप्रधान अवस्था में पहुंच गया है। जो बाहरी सॉल्यूशंस है वो तो हमें अपनाना जरूरी है, ग्रीन एनर्जी को यूज करना, कंजम्पशंस कम करना, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन साथ साथ आत्मा को सशक्त जब बनाते हैं तो वहां खोखलापन नहीं रहेगा, भरपूरता महसूस होगी। जब खोखलापन होता है तब हमें भरने की इच्छा होता है, तो जब भरने की कहां से हम भरते हैं, जब डिप्रेशन में आते ज्यादा खाना खाते हैं, माइंडलेस शॉपिंग करते हैं, तो जरूरी जो नहीं है वो हम कर रहे हैं। कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण से उसका प्रभाव प्रकृति पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए आत्मा जब संपन्न संपूर्ण महसूस करेगी तब वो फिर प्रकृति से ज्यादा वो लेने की चेष्टा नहीं करती आत्मा। तो इसीलिए राज्यों का अभ्यास बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हुए संपन्न और संपूर्ण जब महसूस करेगी वहां खालीपन नहीं रहेगा, फिर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे या फिर नेगेटिविटी में नहीं जाने से फिर ये जो कंजम्पशन कल्चर है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा कंजम्पशन होगा जब खालीपन महसूस होता है, इसलिए भीड़ में भी हम अकेला महसूस करते हैं। इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को सशक्त करते हुए खुद के अंदर सर्व गुणों से संपन्न करना होगा, क्योंकि जहाँ ग्रीडीनेस ज्यादा होता है, जहाँ इच्छाएं ज्यादा होती है, तो प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जब हमारा थिंकिंग हाई होगा, हमारा कंजम्पशन लो होगा और हमारा लिविंग बहुत ही साधारण और सिंपल हो सकता है। जितना हमारा लिविंग सिंपल, उतना हम अपने क्लाइमेट को पुनः वापस उस सतो प्रधान स्थिति तक वापस दोबारा हम जरूर ले आ सकते हैं। जरूर आज यहाँ हम सभी एक संकल्प करें, हम सभी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग करें, और दूसरी बात उस परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हुए आत्मा को सशक्त और संपन्न संपूर्ण बनाते चले, ताकि फिर हम खुद खुश रहे और खुशी के वाइब्रेशंस हम चारों तरफ फैलाते चले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन दीदी जी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू बीके गोलोजे पिल्स टू शेयर हिज ग्रीटिंग्स। बीके गोलो ओरिजिनली फ्रॉम जर्मनी ज्वाइन बीकेज इन द मिड 80s. He is our advisor on solar energy and head of India One Power Plant. He is also president of Charitable Trust India Care in Berlin, Germany, and since 2009 participates and lectures regular at the UN climate conferences. So I would request to BK brother to share his greetings.
Om Shanti. Dear respected dignitaries on the stage, and dear respected brothers and sisters in the audience, the last 3 months I was traveling in Europe, and the news everywhere were quite devastating. There has been massive droughts, floods, heat waves, storms, forest fires, and whole mountain ranges and whole regions they got destroyed by climate change. But it's not only Europe. From all over the world, we hear one or the other catastrophe. I'm just reminded on the flooding in Himachal and in the Himalayas recently in India, which are related to climate change. Long time, climate change has been predicted by science, and now it is happening with full force. Everybody knows also about science, but it seems humanity is not able to make the needed collective action to protect climate, to protect our biodiversity and the future of humanity. Recently, the UN warned of a global food shortage, and I'm aware that India has stopped exporting rice and wheat because the harvest was not so good, and this happens all over the world already. And Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, he said, climate change is out of control. And this, unfortunately, is the truth. It is already out of control. Now we can only adapt towards the change of climate. We cannot stop it any longer. So it seems that ego and greed are ruling the world, and humanity has reached a very critical time. What can we do about this? Let me explain a little bit what Brahma Kumaris is doing in the last 30 years. 30 years ago, Brahma Kumaris engaged in research and development of solar energy. And meanwhile, we are one of the biggest institutional users of solar energy in the country. We have carried out more than 25 research projects, which are partly funded from the Indian government, German government, and Australian government. And Brahma Kumaris operates various solar steam cooking systems, solar hot water plants, hundreds of solar photovoltaic systems in our centers. And we recently completed India One, a 1 megawatt solar thermal power station. Please come and visit us. The station is 3 kilometers from here, and we actually supply electricity to this campus all the time. It was an 80 crores project and was partly funded by the German and the Indian government. We also executed recently the construction of a biogas plant and waste management station, and we have also initiated a massive tree plantation program called Kalp Taru, and we have also yogic farming. We teach the farmers meditation, and the results are very incredible. The yield is 30% better. So we also share as much as possible these technologies, and we do workshops and seminars free of cost. Our aim is to maximize the use of clean technology and such reduce our own carbon footprint as an institution. 16 years ago, the Brahma Kumaris also created an environmental initiative, and since 2009 in Copenhagen, we are affiliated to the United Nations, and we are participating at the UN Climate Conference. Each conference we organize almost 25 programs and also interact with the local community. It is the understanding of the Brahma Kumaris that consciousness and awareness are at the root of our actions and therefore also the current crisis. Climate change is a call for humanity to wake up, and we all have to change ourselves on the inside and adopt values and ethics. With the help of more than 7,000 meditation centers worldwide, the Brahma Kumaris offers a wide range of free courses, workshops and conferences in order to inspire people to raise their consciousness and change their lifestyle. We actually have a green initiative for our centers and have a green policy to our centers and trying to change our centers towards a green economy. So, let me summarize. Brahma Kumaris is actively propagating clean technology. We're in research. We're in teaching awareness campaigns. But most important is, we believe, a profound shift in our consciousness and awareness will bring the needed change in action and lifestyle. We call upon the world to join us in meditation, and luckily we had all these meditations today, and reflection to bring a profound shift in our hearts and our minds. Meditation and yoga is the foundation to bring real transformation to the world and establish a new golden era, which we call here Sat Yuga. Thank you very much.
Thank you, brother. अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सेशन के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री राजेश्वर सिंह जी, जो के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड वाइस प्रेसिडेंट सी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने विचार आज के इस सेशन में हमारे बीच में रखें. ऑनरेबल श्री राजेश्वर सिंह जी.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. भारत माता की, भारत माँ के नाम पर हम सभी का हाथ उठना चाहिए. भारत माँ, भा में रत रहने वाली वह माँ जिस माँ के गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, अपने कार्यों को संपादित करते हैं, उस माँ के नाम से हम किसी का परहेज नहीं होना चाहिए. और आपका देश भारत पूरे विश्व में अगर किसी माँ को संज्ञा किसी को मिला है तो वह देश है भारत. इससे भारत माँ हम अति भाग्यशाली है, अति ऊर्जामान है, अति शक्तिशाली है कि हमारे देश को भारत माँ की संज्ञा मिली है. इसे भारत माँ के नाम से हम किसी का परहेज नहीं होना चाहिए। भारत माँ के गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, अपने कार्यों को संपादित करते हैं। हमारे जो ओम शांति का स्वरूप जिसके लिए हम आए हैं, जिसका पालन कर रहे हैं, ये माँ के गोद में ही हम कर रहे हैं। आज सर्वप्रथम सम्मानित मंच पर विद्यमान दिव्य विभूतियों एवं बीके मृत्युंजय भाई जी को दिल की गहराइयों से प्रणाम एवं ओम शांति का अभिवादन करते हैं। मंच पर बैठे आदरणीय डॉक्टर बीके पंडिया मुनि जी, राजयोगिनी बीके दिव्य प्रभा जी, डॉक्टर आनंद पोडर जी, श्री जितेंद्र परदेसी जी, आदरणीय श्री आर सी मित्तल जी, आदरणीय मिस्टर एम प्रभाकर राव जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके सरला बहन जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके शुक्ला बहन जी, आदरणीय बीके सुमन जी, बीके गोला जी, बीके नथमल जी, बीके नेहा बहन जी, सम्मानित मंच, चूंकि हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जिनकी कार्यप्रणाली, जिनका कार्यक्षेत्र, जिनकी कार्यकुशलता, जिनकी कार्यपरूपता सर्वविदित है। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं, कुशीनगर क्षेत्र के जनपद से हम बिलोंग करते हैं और काफी संख्या में कुशीनगर की भाई बहने आई हुई हैं आपके इस कार्यक्रम में। अभी हमारे उड़ीसा के भाई मिले थे, तेलंगाना के भाई मिले थे, बिहार के मिले थे, नेपाल देश के मिले थे, अन्य अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में, बहुतायत संख्या में हमारी भाई हमारी बहनें आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप सभी को मैं हृदय से साधुवाद दूंगा। ये तीसरे दिन कार्यक्रम का चल रहा है, हम लोग जो ये ऊर्जा ले रहे हैं, निश्चित रूप से यह ऊर्जा स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, उस समाज के लिए और जिस भी क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, ग्राम सभा की इकाई, न्याय पंचायत की इकाई, वार्ड की इकाई, ब्लॉक की इकाई, जिले की इकाई, प्रदेश और देश, हम उसको सुशोभित करेंगे। दूर दूर से आए हमारे भाइयों बहनों माताओं को सादर प्रणाम एवं ओम शांति। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम मैं अभी ले रहा था, क्योंकि महाराज जी के साथ विगत 30 साल से अनवरत हम लोग कार्य करते हैं। मैं अपने प्रदेश की बात करूं, प्रदेश में कार्यप्रणाली, अपने कार्यों को प्रारंभ हम लोग कैसे करते हैं, दुरू क्षेत्रों में सर्वप्रथम 30 साल पहले हम लोग दुरू क्षेत्रों में जाते थे और जिनको लोग केवल वोट लेने और देने तक सीमित रखते थे, जो आदिवासी जातियां कही जाती थी, दलित, मुसहर, बीन, मलाह, पीड़ित, शोषित, वंचित, जिनको समाज से परे रखा जाता था, ऐसे लोगों के साथ हम संबोध करते थे, उनके सुख दुख की चिंता करते थे, उनकी पीड़ा सुनते थे, उनके कदम में कदम मिलाकर चलने का हम संकल्प लेते थे और उनके साथ जो हम कार्य करते थे, निश्चित रूप से उनमें शांति की अनुभूति होती थी। जिनको जो शिक्षा से वंचित थे, जो स्वास्थ्य से की चिंता नहीं करते थे, जिनको समाज ने दर किनारे करके रखा था, ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो अलख जगाया, वो अलख आज पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश उसे हर्षोल्लास है, उसका लाभ मिल रहा है। हमें याद है वो दिन, पूर्व में हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में, हमारे देश में, हमारे भारत में सर्वप्रथम हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया बेटियों की सुरक्षा के लिए। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला कार्य उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने किया। ऐसा हम लोगों ने माना कि बेटी जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में सुरक्षित रहेगी, उस परिवार में उस समाज में कभी आपदा और विपदा नहीं आएगी और वह परिवार वह समाज वह प्रदेश वह देश आगे बढ़ेगा। इस भाव से हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड टीम का गठन हम लोगों ने किया। बेटियां पढ़ने जाती थी तो सुरक्षित गई सुरक्षित आएंगी कि नहीं यह चिंता पूरे घर वालों से लेकर के पूरे समाज को रहता था। और आज उत्तर प्रदेश में अगर हमारी बेटी 12 बजे रात को भी निकलती है तो किसी की औकात नहीं है उसका बाल मां का कर दे। बेटियां सुरक्षित हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों ने लिया। उसके बाद गौ माता भी कल गौ माता की बात हो रही थी। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में गौ माताएं सड़क पर दिखती हैं, यह सत्य है। उसकी चिंता भी हम लोगों ने किया। जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है अगर वह सुरक्षित नहीं है तो मेरा सुरक्षित रहने का कोई मतलब नहीं। एक गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और वह गौ माता पूरे जीवन भर अपना दूध हमको पिलाती है, हमको स्वस्थ रखती है, हमको जवान रखती है, हमको समाज में करने के लिए प्रेरणा देती है और उस गौ माता की सुरक्षा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्य हम लोगों ने किया है, गौ माता की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने चिंता किया है और आज पूरे प्रदेश में अगर कहीं गौ माता दिखाई देती है तो वह सुरक्षा के भाव से सुरक्षित है तो दिखाई देती है। अभी बनारस में मेरा कार्यक्रम लगा था, वहां बनारस में तमाम हमारे किसान भाई, चूंकि बीज विकास निगम मेरा है, बीज विकास निगम किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश में किसानों को अच्छा बीज हम उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों की बैठक हम ले रहे थे बनारस में और तमाम हजारों किसान भाई आए थे। सबकी पीड़ा थी कि किसान जो बछड़े हैं जो गौ माता है किसानों की फल को नुकसान किसानों की फसल को नुकसान कर रही है। सबकी बात हमने सुना। जब मेरा नंबर आया मैं खड़ा हुआ अपनी बात कहा कि आप बताओ कि एक छह साल पहले जब ये गौ माता कट जाती थी या उनका दोहन होता था उस समय आपकी पैदावार क्या थी? तो एक किसान भाई उठे तो कहे कि भैया उस समय हमारे खेत में एक मन का कट्ठा मतलब 40 किलो एक कट्ठे में हम पैदावार कर लेते थे। हम आज आप पैदावार क्या कर लेते हैं? तो बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा कि आज तो मैं वह पैदावार 3 गुना और 4 गुना भी कर लेता हूं। हम तो ये बताएं आप कह रहे थे कि गौ माता और बछड़े बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो गौ माता और बछड़े नुकसान करते तो वो बढ़ता पैदावार की कम होता, तो आज आप 4 गुना पैदावार कर रहे हैं और पूर्व में आपका पैदावार 40 किलो था एक कट्ठे में 40 किलो होता था और आप उसके 4 गुना पैदावार कर रहे हैं। तो उस गौ माता की सुरक्षा में गौ माता के व्यवस्था में आपकी पैदावार बढ़ी है तो अच्छी बात मानी जाएगी। इसे गौ माता किसी भी रूप में देखिए इस पृथ्वी पर सबको फलने फूलने रहने का अधिकार सबको ईश्वर ने दिया है, चाहे वो कीड़े हैं कीड़े मकोड़े हैं आदमी है पशु है पक्षी है, सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है, सबको खाने पीने का अधिकार है। इसलिए हम किसी से वंचित नहीं रह सकते। जीवन यापन सबको करने के लिए मिला है, सुख समृद्धि और वैभव की आवश्यकता सबको है। इसीलिए वह व्यवस्था वह चीज या जो ब्रह्म कुमारी द्वारा दिया जा रहा है इसको अनुकरण करने की आवश्यकता है। यह अनुकरण करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शिव काया आध्यात्मिक विद्यालय खूब फल फूल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर में आप जाएंगे यह ब्रह्म कुमारी का कार्य आपको देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा मीरा दीदी के तत्वावधान में हम लोग कार्य करते हैं। मीरा दीदी हो तो खड़ी हो जाए, आए भी होंगी हमारे जनपद से। मीरा दीदी का कार्य क्षेत्र गांव मेरा धर्मपुर बुजुर्ग है जो कुशीनगर में है और आपका कार्य क्षेत्र नेपाल बिहार उत्तर प्रदेश को जोड़े हुए हैं। आप एक बहुत बड़ा सेंटर का निर्माण कार्य 3.5 साल से आप कर रही है मेरे गांव में। कई करोड़ की लागत से वह सेंटर तैयार हो रहा है
मैं आप सभी को आमंत्रण दूंगा, आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कुशीनगर में जरूर आवें, कुशीनगर में आप आवें और एक सफल प्रयास, हमारी बहन जो मीरा दीदी है उनका एक सफल प्रयास आप देखें, अनुभूति करें उनका कार्य क्षेत्र। और ऐसा भी नहीं कि वो 5 करोड़ 2 करोड़ रुपया अपने घर से लगा दिया, ऐसा भी नहीं है, आप ही के सहयोग से, आप ही के सौजन्य से, आप ही की ताकत उसमें देखने को मिलती है। और ये सब कार्य हर क्षेत्र में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सुने और चले गए फिर कल से अपनी कार्य प्रणाली में और अपनी व्यवस्था में हम लग गए। ठीक है, वो सब करिए, लेकिन जो जिम्मेदारी हम कर सकते हैं, एक अनुभव का लाभ हम ले सकते हैं, वह लाभ हम सभी को लेने और करने की आवश्यकता है। वहां से बगल में नेपाल क्षेत्र है, नेपाल देश है, बगल में बिहार प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है, और तीनों का वह बॉर्डर वह क्षेत्र है जहां निर्माण कार्य मीरा दीदी का चल रहा है और अति सराहनीय कार्य। मेरा गांव चूंकि ठाकुरों का गांव है, वहां सर्वप्रथम आपके कार्य प्रारंभ हुआ तो तमाम लोग इनके पास आए कि यह गांव ऐसा है वैसा है, आप यहां नहीं सफल हो पाएंगी, लेकिन दीदी का प्रयास इतना बेहतर और बेहतरीन रहा कि आपने एक संबल प्रदान किया उस क्षेत्र के में, पूरे पूर्वांचल में, और उससे एक ही जनपद नहीं कम से कम 200 जनपद उससे प्रभावित हुए हैं और उससे लाभ उनको मिल रहा है। गर्व हम लोगों को इसलिए है कि वह कार्य मेरे पैतृक गांव में हो रहा है। ओम शांति का जो ये स्वरूप जो पाठ, उस स्थल पर पहले एक व्यक्ति नहीं जाते थे, आज धीरे धीरे हजारों की संख्या, पूरा गांव जाता है, गांव ही नहीं पूरा जनपद, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जो भी हमारे जनपद में आते हैं वो लोग जरूर उस कार्य को देखने एक बार जाते हैं और उससे उनको लाभ मिलता है। हम आप सभी लोग जो भी जहां के रहने वाले हैं, एक चिंता जरूर होनी चाहिए, जो दबे हैं, किचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, हमारे क्षेत्र में मुसहर जातियां हैं, मुसहर बीन मला जो अति दलित हैं, जिनकी चिंता किसी ने नहीं किया, उसकी चिंता पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सरकार बनते ही किया है। पूर्व में भी उसके लिए लड़ाई लड़ी गई और व्यवहारिक पक्ष में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके लिए उन्होंने वो कार्य कर रहे हैं। आज उनके दरवाजे तक सड़कें हैं, उनके बच्चे पढ़ने शिक्षा लेने जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता हम लोगों ने किया है, स्वास्थ्य संबंधी चिंता किया है, शिक्षा संबंधी चिंता किया है, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जॉब कार्ड, सैकड़ों योजनाएं ला करके हम लोगों ने उनको लाभान्वित कराया है। ये कार्य हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे कोई प्रदेश हो, देश हो, ये सब कार्य होना चाहिए। जो पीड़ित है अगर उसके लिए हम 2 कदम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको शांति मिलेगी। वही सारी चीजें यहां हम लोगों को शिक्षा के रूप में दिया जा रहा है, जो 3 दिन से हम लोग यहां अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं सम्मानित दीदियों के द्वारा, भाइयों के द्वारा। यह लाभ लेने का समय, यह जीवन सुखमय जीवन मिला है, इसको जितना ही आप सफल बना सकें यह हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और सफल वही व्यक्ति होगा जो श्रद्धा भाव से, तन्मयता से, उन्मुखता से लग करके समाज के प्रति कार्य करेगा। अभी हमारी दीदी कह रही थी, हमने यहां देखा है इतने लंबे लंबे उम्र के, 99 साल, 84 साल, 100 साल, 104 साल कि हमारी माताएं, हमारी बहनें मनोयोग से लग करके यह शांति का पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान हम लेने आए हैं, आज 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से हमारी माताएं लगी हैं। यह भावपूर्ण जो कार्यक्रम है, सर्वविदित है, हम क्या लेकर जा रहे हैं, जो लेकर जाएंगे वह परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए निश्चित रूप से, आशा है, पूर्ण विश्वास है, उसका लाभ हम आप सभी लोग लेंगे। और अनवरत यहां मैं आमंत्रण आने के लिए भी दूंगा, आप लोग आते हैं अच्छा लगता है, एक दूसरे के प्रति अपने भाव को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे के प्रति जो हम कार्य करते हैं उस कार्य की दक्षता को समझने और करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के प्रति जो एक भाव बनता है। तमाम सारे हमारे विधायक आए हुए हैं, तमाम सारे हमारे मंत्री आए हुए हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे भाई और बहन आए हुए हैं, और कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम वो शक्ति लेकर जाएंगे और उस शक्ति हम सभी को लाभान्वित करेगी। आज अभी कल उड़ीसा के लोग मिले थे, कर्नाटक के लोग मिले थे कि हम लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे वहां मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छी बात है, हमने कहा कि आप भी उस लायक बनिए, आप कार्य करिए, दलितों के बीच में जाइए। अब बता तो रहे हैं, जिनसे लोग हाथ नहीं मिलाते थे, जिनके पास बैठने से किनारे हो जाते थे, उन लोगों के बीच में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। उनके घर जाते थे, उनके गांव में जाते थे, दलित बस्तियों में जाते थे, वहां सभोज का कार्यक्रम करते थे, और निश्चित रूप से वह चीजें आज देखने को मिल रही है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सम्मानित मंच को, देव दुर्लभ माताओं बहनों को, कुशीनगर से जितने हमारे सहपाठी भाई बहन आए हुए हैं, आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, आप सभी को फिर रैतल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी। और आप ब्रह्मा कुमारी के इतने अच्छी तरह से सहयोगी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में एक वीडियो मैसेज श्री वी मुरलीधरन जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसी कारण से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज हमारे इस ग्लोबल समिट के लिए भेजा है, तो अभी हम उस वीडियो को देखेंगे।
सभा में उपस्थित सभी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारिया, देश भर से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कारम, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक ईश्वर एक विश्व परिवार ग्लोबल समिट के स्वागत सत्र में आप सभी के साथ जुड़कर मैं अत्यंत हर्षित हूं। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व को भारतीय सनातन संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के महान संदेश को प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ब्रह्म कुमारियों और बहनों के साथ मेरा संबंध नया नहीं है, विभिन्न अवसरों पर अक्सर मुलाकात हुई और मुझे हमेशा आपके निस्वार्थ स्नेह और सेवा भाव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं ऐसी सेवा के लिए आपके सेवा भाव की सराहना करता हूं। वर्तमान समय में ब्रह्म कुमारी संस्था भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ संयुक्त रूप से अनेक अखिल भारतीय अभियानों का हिस्सा बनकर राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का कार्य कर रही है। ब्रह्म कुमारियों ने Y20 यूथ इंडिया फोरम 2023 में सक्रिय भागीदारी एवं नशा मुक्त भारत अभियान, जल जन अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान, वृक्षारोपण अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से भारत की G20 अध्यक्षता और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज समूचा विश्व भारत को एक बड़े परिवर्तक के रूप में देख रहा है। आप सभी ने देखा है, चाहे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप हो या विश्व के अनेक देशों के मध्य अशांति की स्थिति हो, सभी की निगाहों भारत की ओर उम्मीद के साथ देखती है। सभी को आशा होती है कि भारत ही वो देश है जो सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। यह बड़ा ही गौरवशाली कालखंड है जिसमें भारत विश्व गुरु के रूप में अपना अस्तित्व पुनः प्राप्त कर रहा है और हम सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। आज संपूर्ण मानवता को मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक चेतना की समझ की आवश्यकता है। आज हमें ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जो मनुष्य के बीच बढ़ रहे मतभेद और मन की दूरियों को समाप्त कर सके। आज हमें ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जो संपूर्ण मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधकर वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार कर सके। भारतीय सनातन संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार की भावना से देखा है तथा इसे व्यवहार और आचरण में अपनाया है। भारत ने सदा सबको सम्मान दिया है, सभी को अपना समझा है। सहिष्णुता और शांति का संदेश हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ने अत्यंत प्राचीन काल से ही दिया है। स्वयं को सशक्त बनाकर अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना और मानवता के कल्याण के लिए सेवा भावना का दर्शन हमारी सनातन संस्कृति में ही देखने को मिलता है। इसलिए हम सभी को हमारी सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी में भौगोलिक, भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हम सभी की भावनाएं और जैविक आवश्यकताएं एक जैसी ही है। सारा विश्व हमारा कुटुंब है। आप सभी जहां भी रहते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं तथा जिस भी सेवा कार्य द्वारा समाज में अपना योगदान देते हो, आप अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपने विचार, वाणी, कर्म व्यवहार द्वारा एक दूसरे को प्रेम और शांति का अनुभव कराकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करें, तभी इस आयोजन का लक्ष्य पूर्ण होगा। मैं पुनः ब्रह्म कुमारियों के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप 80 से भी अधिक वर्षों से मानवता के कल्याण की दिशा में प्रयासरत है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए एवं भारत को फिर से विश्व गुरु और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आप पूरी निष्ठा एवं उत्साह के साथ सेवा करते रहेंगे। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।
भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय निकालकर हमें वीडियो मैसेज भेजा। और अभी हम अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण की ओर हैं। अभी मैं नथमल भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे स्टेज पर बैठे सभी अतिथिगण और इसके साथ साथ आप सब जो यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखने के लिए बैठे थे, उनका वोट ऑफ थैंक्स करें। भाई जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूरिस्ट विंग के, तो आदरणीय नथमल भाई जी से मैं अनुरोध करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए।
ओम शांति। सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा का थैंक्स देंगे जिन्होंने ये सारा कुछ हम सब देख रहे हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे सभी के माध्यम से करवा रहे हैं, और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा जिनके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की सारी गतिविधि चल रही है, और तीसरा मैं कहूँगा कि हमारे मृत्युंजय भाई जी जो एक इतना सुंदर कार्यक्रम बनाने के निमित्त बनकर के इतना सुंदर कार्यक्रम करते हैं, तो उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे डॉक्टर बीके पांड्यामणि जी को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, हमारे आदरणीय राजयोगिनी दिव्य प्रभा दीदी को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी तालियों के द्वारा अगर उन डॉक्टर आनंद पोदार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सुंदर अपने बात रखी। श्री जितेंद्र पारदर्शी जी भले अभी मंच पे नहीं है, उन्होंने भी संक्षेप में बहुत अच्छी बात रखी, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे श्री आर सी मित्तल जी, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे मिस्टर प्रभाकर राव जी, इनका भी जो हैदराबाद से खास पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे डॉक्टर एम मानिक सगम, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारी तुषार प्रभु जी, जिनका नाम ये प्रभु, तो ऐसे महान आत्मा का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारी आदरणीय सम्मानीय सरला दीदी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे अद्वैत चरण गटनायक जी, जो खास उड़ीसा के रहने वाले हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे मधुकर स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुक्ला दीदी, जिनकी वाणी के अंदर इतना ओजस्व है, मैं आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे सुमन दीदी, जो हमारी एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ब्रदर गोलो जी, जिनका कि कितना चमत्कार है, वन इंडिया वन सोलार के लिए आप हेड बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नूपुर नृत्य डांस और हमारे जो फ्यूजन क्लासिक डांस, जिन्होंने दोनों ने ही हम सभी का मन मोह लिया, ऐसे दोनों ही हमारे जो डांस एकेडमी से आए हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारी बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट भ्राता राजेश्वर सिंह जी, जिनकी ओजस्वी वाणी ने सबको भरपूर कर दिया, तो ऐसे हमारे आज के चीफ गेस्ट राजेश्वर सिंह जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जोरदार तालियों से आप सभी धन्यवाद करें। और भले ही वो ना आ पाए, लेकिन अपनी बात उन्होंने वीडियो माध्यम से रखी, मुरलीधरन जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ये सारा संचालन करने के लिए हमारी नया बहन जी ने पूरा सबको बहुत सुंदर संचालन किया, नया बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे धन्यवाद ज्यादा आप सभी जो अभी भी कुछ बैठे हुए हैं, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो पूरी कुर्सियां भरी हुई थी, लेकिन धैर्यवत आप सब बैठे हुए हैं, इसलिए सबसे जोरदार आपका धन्यवाद। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं सभी। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद नतमल भाई जी, भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम जैसे इस प्रोग्राम की शुरुआत 2 मिनट मेडिटेशन से किया, इसी प्रकार इसकी समाप्ति भी हम 2 मिनट उस परमात्मा की याद में करेंगे। उससे पूर्व कुछ अनाउंसमेंट हैं। 4 से 6 बजे का जो शाम का सेशन था, वो 5:30 बजे शुरू होगा। तो सभी ध्यान दें, सभी 5:30 बजे यहाँ पर इस हॉल में उपस्थित हो जाएं। और आज रात को 9 से 10 साईशा गुप्ता, जिनको आपने सुपरस्टार सिंगर में देखा है, जो सेकंड रनर अप रही हैं, साईशा गुप्ता जी का रात को म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, तो आप दोनों प्रोग्राम्स का लाभ अवश्य लें। और अभी हम 2 मिनट उस परमात्मा की याद से इस सेशन को समाप्त करते हैं।
हाथ मिलाएंगे सुखमय संसार।